आगे सबक देखिए भाई। वमनिस्तौलदा अमता गैरिही मिन निकाहिन सुम्मा मलकहा सारत उम्मा वलदिन लहू। وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تصير أم ولد له ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا وله فيه قولان وهو ولد المغرور। بے گزشتہ سبق میں ہم نے باب الاستیلاد شروع کیا تھا, मैंने आपको बतलाया था कि इस्तीलाद जो है इसका मादा वाव लाम दाल है, तो इस्तीलाद असल में था इस्तिवलाद, या की जगह वाव था और फिर उस वाव को या से बदल दिया गया माकबल कसरा की वजह से, तो इस्तीलाद हुआ। और इस्तीलाद ये बाब इस्तेफाल है और बाब इस्तेफाल में सीन तलब के लिए आता है, तो इस्तीलाद का माना है औलाद को तलब करना, और औलाद बीवी से भी तलब की जाती है और अपनी ममलूका बांदी से भी, लेकिन ये लफ्ज खास तौर पर बांदी के लिए ही इस्तेमाल होता है भाई। और आपने पढ़ा था कि जब किसी शख्स की कोई बांदी बच्चे को जन्म दे और आका इकरार कर ले कि ये मेरा बच्चा है, तो उस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा और नीज ये बांदी अब इस आदमी की उम्मे वलद बन गई, और इस आदमी के इंतकाल के बाद, इस आका के इंतकाल के बाद इसने आजाद होना है भाई। और इस बांदी को बेचना भी जायज नहीं है और किसी और को इसका मालिक बनाना भी जायज नहीं है भाई। और दलील जिक्र की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतकहा वलदुहा। हजरत मारिया किबतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी, इनसे हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हो पैदा हुए और फिर 1.5 साल की उम्र में वफात पा गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा क्या आप इनको आजाद नहीं करेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया आतकहा वलदुहा, कि इनके बच्चे ने इनको आजाद कर दिया है। तो इंदल अहनाफ इस हदीस का माना यह है कि इनके बच्चे ने इनको आजादी का मुस्तहिक बना दिया है। वजह यह कि दीगर अहादीस के अंदर जिक्र आता है कि उम्मे वलद जो है आका के मरने के बाद आजाद होती है, तो हमने दोनों हदीसों में तत्बीक दी, दोनों में मुताबकत पैदा की कि उम्मे वलद जो है वो आका के मरने के बाद आजाद होगी, और नीस इस हदीस का माना यह है कि उम्मे वलद आजादी की मुस्तहिक हो गई है और उसमें आजाद लोगों वाले अहकाम आ गए हैं, यानी अब इसको बेचना भी जायज नहीं और किसी दूसरे को इसका मालिक बनाना भी जायज नहीं। तो इस तरह हमने दोनों हदीसों पर अमल कर लिया। और नीज अकली दलील भी साहिबे हिदाया ने जिक्र की थी, वजह यह कि यहां पर आका ने बांदी से वती की है और वती की वजह से आका और बांदी के दरमियान जुजियत आ गई, तो बांदी आका का जुज बन गई, और आजाद आदमी के जुज की बै और तमलीक तो जायज नहीं है, लिहाजा इस बांदी की भी बै और तमलीक जायज नहीं है। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि जुजियत किस तरह आ गई कि आका और बांदी के नुतफे आपस में मिल गए इस तौर पर कि अब वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, तो ये दोनों एक दूसरे का जुज बन गए और इसी नुतफे से आगे हमल करार पाया, इसी से आगे बच्चा बना, तो वो बच्चा भी दोनों का जुज है, और तो बच्चे के अंदर दोनों के जुज इकट्ठे हो गए, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए, दोनों शख्स वाहिद के हुक्म में हो गए, तो दोनों में मालूम हुआ आका और बांदी में यहां जुजियत आ चुकी है भाई। इस पर फिर सवाल पैदा होता है कि अगर बांदी आका का जुज बन गई है तो अपना जुज तो इंसान का ममलूक नहीं हो सकता। जैसे ही कोई शख्स अपने जुज का मालिक बनता है, मसलन अपने बेटे को खरीद लिया, तो जैसे ही मालिक बनेगा साथ ही वो बेटा आजाद हो जाएगा, तो अपना जुज इंसान का ममलूक नहीं हो सकता, वो उस पर आजाद हो जाता है। तो ये तो तकाजा करता है कि ये बांदी जब आका का जुज बन गई है तो इसको भी फौरन आजाद हो जाना चाहिए। तो साहिबे हिदाया ने इस एतराज का जवाब दिया कि आपकी बात ठीक है, बांदी जो है आका का जुज बन गई है, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो ये दोनों में जो जुजियत आई थी वो बच्चे के एतबार से आई थी। तो जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो बच्चा बांदी से जुदा हो गया, मां से जुदा हो गया। तो लिहाजा अब हकीकतन आका और बांदी एक दूसरे का जुज ना रहे, सिर्फ हुक्मन जुज हैं, यानी जुज लगाने का हुक्म लगाया जाएगा। हकीकत में अब एक दूसरे का जुज नहीं, क्योंकि जहां पर दोनों के जुज इकट्ठे हुए थे यानी बच्चा, वो तो मां से जुदा हो चुका है, उसकी पैदाइश हो चुकी है। तो अब सिर्फ हुक्मन जुजियत बाकी है। जब सिर्फ हुक्मन जुजियत बाकी है तो आजादी का सबब ज़ईफ हो गया। हकीकतन जुज होता तो आजाद होती बांदी, लेकिन यहां तो हुक्मन जुजियत है, लिहाजा आजादी का सबब ज़ईफ हो गया। तो आजादी तो नहीं आई, अलबत्ता आजादी के बस अहकाम आ गए कि अब इस बांदी को बेचना भी जायज नहीं और किसी दूसरे को इसका मालिक बनाना भी जायज नहीं है भाई। फिर साहिब हिदाय ने एक और एतराज का भी जवाब जिक्र किया। यहां पर फिर एक और एतराज होता है कि यह बांदी आका के मरने के बाद इसलिए आजाद होगी क्योंकि यह बांदी आका का जुज है। तो फिर तो अगर औरत अपने खावंद की मालिक बन जाए, मसलन एक औरत है और उसने किसी गुलाम से निकाह किया हुआ था और इससे दोनों की औलाद भी हुई, तो दोनों के दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया। फिर इस औरत ने अपने खावंद को खरीद लिया, तो खरीदते ही निकाह तो खत्म हो गया और ये खावंद अब इस औरत का ममलूक बन गया, तो दोनों की औलाद हो चुकी है, दोनों में जुजियत मौजूद है। तो ये जुजियत तकाजा कर रही है कि जब इस मालिकन का इंतकाल हो तो इसका ये जो ममलूक जो इसका हुक्मन जुज है इसको भी आजाद होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि अहनाफ ये जो खावन जो अपनी बीवी का ममलूक हो चुका है इसकी आजादी का हुक्म नहीं देते, इसकी आजादी का हुक्म नहीं देते कि ये अपनी मालिकन के मरने पर ये आजाद नहीं होगा, हालांकि इसको भी आजाद होना चाहिए क्योंकि ये भी अपनी मालिकन का जुज है। तो उसका जवाब दिया साहिब हिदाय ने कि ये जुजियत जो है नसब के एतबार से होती है और नसब तो सिर्फ मर्दों की तरफ से चलता है, तो इसी तरह हुर्रियत भी जो है सिर्फ मर्दों के हक में साबित होगी, औरतों के हक में नहीं। आका मर्द है और नसब किसकी तरफ से चलता है? मर्दों की तरफ से। तो आका पर उसकी ये बांदी आजाद होगी जब आका मर जाएगा, लेकिन औरतों की तरफ से तो नसब नहीं चलता, लिहाजा मालिकन के मरने पर उसका ममलूक गुलाम जो उसका जुज है वो उस पर आजाद नहीं होगा भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने ये भी बतलाया कि उम्मे वलद को बेचना या दूसरे को मालिक बनाना तो जायज नहीं, लेकिन आका के लिए इसके साथ सोहबत भी जायज है, आका इससे खिदमत भी ले सकता है, आका इससे उजरत पर किसी दूसरे की खिदमत भी करवा सकता है और आका किसी दूसरे से इस बांदी का इस उम्मे वलद का निकाह भी करवा सकता है। और यह भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि बांदी से जो औलाद होती है उसका नसब खुद ब खुद आका से साबित नहीं होता, बल्कि आका का इकरार भी जरूरी है भाई, इसलिए क्योंकि बांदी के साथ जो सोहबत की जाती है उसका मकसद औलाद नहीं होता, बल्कि वहां मकसद सिर्फ कजाए शहवत होती है, सिर्फ शहवत को पूरा करना मकसद होता है, लिहाजा बांदी से जो औलाद हो वो खुद बखुद आका की शुमार नहीं होगी भाई। हां अलबत्ता अगर ये बांदी जो आका की उम्मे वलद बन चुकी है, इसने एक बच्चे को जन्म दिया था और आका ने एतराफ कर लिया कि ये मेरा बच्चा है, तो ये बांदी उम्मे वलद बन गई, अब ये फिराश मुतवस्सित बन गई, अब आगे मुस्तकबिल में अगर ये किसी बच्चे को जन्म देगी तो वो खुद ब खुद आका का शुमार होगा। अलबत्ता आका उसकी नफी करना चाहे तो नफी भी कर सकता है। मैंने आपको बतलाया था कि फिराश तीन किस्म पर हैं, एक फिराश कवी है, एक फिराश मुतवस्सित है, एक फिराश ज़ईफ है। फिराश कवी जो है वो अपनी मनकूहा बीवी है, ये फिराश कवी है, मजबूत फिराश है, इस बीवी से जो भी औलाद होगी वह खुद बखुद खावंद की शुमार होगी, और अगर खावंद इस औलाद की नफी करना चाहता है तो बाकायदा लियान करना पड़ेगा, वैसे औलाद की नफी उससे नहीं होगी। और नीज अगर नसब की नफी करना चाहता है तो यह बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में ही करना पड़ेगी, अगर बाद में नसब की नफी करेगा तो फिर नफी नहीं होगी। तो ये बीवी जो है ये फिराशे कवी है और फिराशे ज़ईफ आम बांदी है, आम बांदी से कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो खुद ब खुद आका का शुमार नहीं होगा जब तक आका एतराफ न कर ले, इकरार न कर ले। जब आका इकरार कर लेगा तो अब इस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा और ये बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। अब ये फिराशे मुतवस्सित बन गई, लिहाजा अब इस बांदी से ये जो उम्मे वलद है जो पहले ही एक बच्चे को आका के लिए जन्म दे चुकी है, इससे आगे जब भी कोई औलाद पैदा होगी वो खुद बखुद आका ही की शुमार होगी। लेकिन यह है फिराशे मुतवस्सित, लिहाजा अगर आका बाद वाले बच्चों के नसब की नफी करना चाहता है तो वहां लियान की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आका के नफी करने से ही बच्चों के नसब की नफी हो जाएगी। अलबत्ता इसके अंदर भी जरूरी है कि बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में नसब की नफी करे, बाद में नफी करेगा तो नफी नहीं होगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि ये जो हमने बयान किया ये हुक्म है, इस शरई मसले का हुक्म बयान किया, यानी जो काजी फैसला करेगा, बाकी दयानतन इस शख्स पर लाजिम है। अगर ये इस बांदी से वती करता था और अजल नहीं करता था और इसकी बीवियों की तरह हिफाजत करता था तो दयानतन इस पर लाजिम है कि ये इस बच्चे के नसब का इकरार करे। और अगर ये आका बांदी से वती तो करता है लेकिन अजल करता है और या इसी तरह इसकी बीवियों की तरह हिफाजत नहीं करता तो फिर दयानतन इसके लिए इस औलाद की नफी जायज है। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि ये जो आका है ये अपनी इस उम्मे वलद का किसी दूसरे से निकाह भी करवा सकता है और जब आका इस उम्मे वलद का किसी दूसरे से निकाह करवा देगा तो अब आका पर ये बांदी हराम हो गई, अब ये गैर की मनकूहा बन गई और फिर उस खावन से इस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया तो ये बांदी तो उस खावंद के लिए फिराशे कवी है तो इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो खुद बखुद उस खावंद का शुमार होगा तो ये बच्चा साबितुन नसब है। अलबत्ता ये बांदी का बच्चा है तो ये इसी बांदी के आका का ममलूक होगा और इस बच्चे का वही हुक्म होगा जो बांदी का है, यानी जैसे आका के मरने के बाद बांदी आजाद हो जाती है इसी तरह ये बच्चा भी आका के मरने के बाद आजाद हो जाएगा। और नीस जिस तरह ये उम्मे वलद सारे माल में से आजाद होती है इससे सही नहीं करवाई जाती, इसी तरह ये जो बच्चा है ये भी आका के सारे माल में से आजाद हो जाएगा और इससे सही नहीं करवाई जा सकती। और अगर आका ने इस बच्चे के नसब का दावा कर दिया तो इस सूरत में याद रखो ये बच्चा आजाद हो जाएगा, अलबत्ता नसब साबित नहीं हो सकता आका से क्योंकि ये बच्चा पहले से ही साबितुन नसब है उस बांदी के खावंद से। और अगर ये आम बांदी थी, मसलन आका की उम्मे वलद नहीं थी, आका की आम बांदी थी और आका ने इसका निकाह किसी से करवा दिया और उस निकाह से इसने बच्चे को जन्म दिया तो ये उस खावन का बच्चा शुमार होगा और अब आका ने कह दिया कि ये मेरा बच्चा है तो इस बच्चे का नसब तो साबित नहीं होगा क्योंकि ये साबितुन नसब है, अलबत्ता ये बच्चा आजाद हो जाएगा और ये बांदी आका की उम्मे वलद बन जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जब आका का इंतकाल होता है तो उम्मे वलद सारे माल में से आजाद हो जाती है और वजह इसकी जो है वो हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्ला की जो हदीस है वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्महातुल औलाद की आजादी का फैसला फरमाया और ये फैसला फरमाया कि इनको बेचा नहीं जा सकता और नीस के इनको सुलुस में से करार नहीं दिया जा सकता। और फिर अकली दलील भी जिक्र की कि ये उम्मे वलद सारे माल में से आजाद होगी इसलिए क्योंकि ये जो इबकाए नस्ल है ये इंसान की हाजात असलिया में से है, जैसे इंसान अपनी जात को बाकी रखने के लिए खाने पीने का मोहताज है तो मालूम हुआ ये खाना पीना इंसान की हाजात असलिया में से है, यानी यूं कहें इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है, इसी तरह अपनी नस्ल को बाकी रखना यह भी इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है और बुनियादी जरूरत बाकी जरूरतों पर मुकदम होती है। इसीलिए तो जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो कफन दफन का इंतजाम उसकी बुनियादी जरूरत होती है, इसलिए वो बाकी तमाम जरूरतों पर मुकदम होगा। चुनांचे कर्जे भी की अदायगी भी कफन दफन के बाद ही होगी और वसीयत भी कफन दफन के बाद ही नाफिज होगी, और इसी तरह वारिसों को माल जो मिलेगा वो भी कफन दफन के बाद मिलेगा, क्योंकि कफन दफन मैयत की बुनियादी जरूरत है। इसी तरह यहां इस मसले के अंदर ये जो बांदी है इसके जरिए आका को औलाद हासिल हुई है, और इबकाए नस्ल इंसान की हाजत असली है, उसकी बुनियादी जरूरत है, और बुनियादी जरूरत बाकी जरूरतों पर मुकदम होती है, तो लिहाजा ये दैन पर भी मुकदम होगी और वसीयत और वरासत पर भी ये उम्मे वलद मुकदम होगी, लिहाजा इससे दैन के लिए भी सई नहीं करवाई जाएगी और वारिसों के लिए भी सई नहीं करवाई जाएगी, ये सारे माल में से आजाद हो जाएगी। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये जो उम्मे वलद है ये आका के कर्ज के लिए सई भी नहीं करेगी, कर्ज के लिए सई भी नहीं करेगी। एक तो उसी हदीस की वजह से वो जो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह से रिवायत है, और दूसरा इस वजह से कि ये जो उम्मे वलद है ये इमाम साहिब के नजदीक माले मुतकविम नहीं है। जब यह माल मुतकविम ही नहीं है तो कर्ज खाहों का इससे हक भी मुतालिक नहीं होगा। अगर कोई कीमत वाली चीज होती तो उससे कर्ज खाहों का हक मुतालिक होता कि उसके जरिए कर्ज खाहों का कर्ज अदा किया जाए, लेकिन यह तो माल मुतकविम ही नहीं है। चुनांचे इसीलिए अगर इस उम्मे वलद को कोई गसब कर ले और गासिब के पास उम्मे वलद हलाक हो जाए तो उस पर जमान नहीं आता, हालांकि जाब्ता क्या है, गासिब के पास किसी की गसब शुदा चीज हलाक हो जाए तो गासिब को जमान देना पड़ता है, लेकिन इस उम्मे वलद का गासिब पर जमान नहीं होता, भाई जमान नहीं होता, लिहाजा इसके साथ कर्जखाहों का हक मुतालिक नहीं होगा। ये इसी तरह है जैसे किसास, भाई किसास जो है वो भी एक हक है, वो कोई माल मुतकविम नहीं है, लिहाजा किसास के साथ भी कर्जखाहों का हक मुतालिक नहीं होगा। मसलन एक आदमी पर बहुत सारे कर्जे थे और उसने किसी से किसास भी लेना है, फिर ये जो मकरूज है इसका इंतकाल हो गया तो इसके जो कर्जखा है वो कातिल के पास चले गए कि हमारे मकरूज का तो इंतकाल हुआ लेकिन उसका आपके जिम्मे हक था, उसने आपसे किसास लेना था, तो अब उस किसास के बदले में हमें माल दें, तो कहते हैं नहीं, किसास जो है वो तो एक हक का नाम है, वो तो कोई माल मुतकविम नहीं है, लिहाजा उसके साथ कर्जखाहों का कोई हक मुतालिक नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर किसी ईसाई की उम्मे वलद मुसलमान हो जाए तो फिर इस सूरत में यह बांदी अब उस ईसाई के तहत नहीं रह सकती, तो ये मुकातबा के दर्जे में हो जाएगी, ये जाकर सई करेगी और पैसे कमाकर लाकर देगी और जब अपनी सारी कीमत अदा कर दे तो ये आजाद हो जाएगी। तो इमाम साहब के नजदीक तो ये गैर मुतकविम है, लेकिन साहिबैन के नजदीक जो उम्मे वलद होती है वो मुतकविम है, अलबत्ता इसकी कीमत आम बांदी के मुकाबले में सिर्फ तीसरा हिस्सा होती है, यानी तीन में से सिर्फ एक हिस्सा। अगर पहले इसकी कीमत 300 दिरहम थी तो उम्मे वलद होने के बाद अब इसकी कीमत सिर्फ 100 दिरहम रह गई है, तो लिहाजा ये अपनी कीमत में सई करेगी और वह कमाकर लाकर उस ईसाई आका को देगी और आजाद हो जाएगी। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये उम्मे वलद ये फौरन ही आजाद हो जाएगी, यानी आका पर इस्लाम को पेश किया जाएगा, अगर वो मुसलमान होता है तो ये इसकी उम्मे वलद ही रहेगी, और अगर वो मुसलमान होने से इनकार कर देता है तो फिर इस सूरत के अंदर ये उम्मे वलद फौरन आजाद हो जाएगी, अलबत्ता इसके जिम्मे अपनी कीमत देन है, वो जाकर कमाएगी और लाकर इस आका को अदा करेगी। लेकिन साहिबैन और इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर अभी से इस बांदी पर आजाद होने का हुक्म लगा दिया जाए फिर तो ये कमाई के अंदर सुस्ती करेगी कि मैं तो आजाद हो ही चुकी हूं, मुझे क्या जरूरत है मेहनत और मशक्कत करने की और पैसे अदा करने की, तो लिहाजा फिलहाल इसके आजाद होने का फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि जब ये अदायगी कर देगी तो फिर आजाद होगी, और जब इसको पता है कि अदायगी से मैं आजाद हो जाऊंगी तो वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द अदायगी कर दे भाई। तो लिहाजा हमारे मसले के अंदर दोनों की रियायत हो गई, बांदी की भी रियायत हो गई, उसको ईसाई मालिक से निजात मिल गई, आजादी मिल गई, और आका की भी रियायत हो गई कि उसको अपनी उम्मे वलद की कीमत मिल गई। जबकि इमाम जुफर के मजहब में तो सिर्फ बांदी की रियायत है, बांदी के आका की कोई रियायत नहीं है, और जिस सूरत में दोनों की रियायत हो वो सूरत बेहतर होती है। और फिर इश्काल होता था इमाम साहब पर कि आपके नजदीक तो ये उम्मे वलद माले मुतकविम ही नहीं है, फिर ये कैसे सही करेगी अपने इस ईसाई आका के लिए। तो उसके दो जवाब दिए साहिबे हिदाया ने। एक जवाब तो ये कि अगरचे हमारे नजदीक ये बांदी माले मुतकविम नहीं है, लेकिन ईसाई के गुमान में तो ये माले मुतकविम है, तो लिहाजा उसको उसके एतिकाद पर ही छोड़ दिया जाएगा, यानी उसके साथ उसके एतिकाद वाला ही मामला किया जाएगा और ये बांदी उसके लिए सही करेगी अपनी कीमत में। और दूसरा जवाब ये दिया था कि अगरचे ये बांदी माले मुतकविम नहीं है, लेकिन माले मुहतरम तो है, इसकी हुरमत और इज्जत तो है। मैंने आपको बतलाया था कि आप जितनी भी चीजों के मालिक हैं उन सब की इज्जत और हुरमत है, कोई अगर वो आपकी चीज जाया करता है तो इस सूरत में उसने आपके माले मुहतरम को जाया किया, तो उसको जमान देना पड़ता है। तो मालूम हुआ ममलिकत इस्लामिया के अंदर हर शख्स की जान भी मोहतरम है और उसका माल भी मोहतरम है, तो लिहाजा ये बांदी भी उस ईसाई आका का माल मोहतरम है। तो अगरचे कीमत नहीं है लेकिन माल मोहतरम तो है और यही काफी है जमान के लिए। ये इसी तरह है जैसे किसास, किसास जो है वो कोई माल मुतकविम नहीं है लेकिन यह हक मोहतरम है, लिहाजा अगर कई मकतूल के अवलिया में से कोई एक किसास को माफ कर दे तो फिर बाकियों का हक माल में आ जाता है और जिसने माफ किया है उसका हिस्सा साकित हो जाएगा और बाकियों को उनका हिस्सा मिलेगा। वजह यह कि किसास अगरचे माल मुतकविम नहीं है लेकिन हक मोहतरम तो है, इसकी वजह से जमान आ सकता है भाई। और यह भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि अगर आका का इंतकाल हो गया इसी ईसाई आका का, तो फिर यह उसकी मुसलमान उम्मे वलद बगैर सई के ही आजाद हो जाएगी। और अगर ये आका की जिंदगी में कमाई से आजिज आ गई तो इसको दोबारा आम बांदी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्योंकि इसको मुकातबा बनाने का सबब अभी भी मौजूद है। अगर आप इसको फिर आम बांदी बनाएंगे तो मुकातबा बनाने का सबब तो अभी भी मौजूद है कि ये मुसलमान है और इसका आका ईसाई है, तो ये तो उसके तहत नहीं रह सकती, तो लिहाजा फिर इसको दोबारा मुकातबा ही बनाना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। ومن استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له وقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا تصير أم ولد له। भाई सूरत मसला ये कि एक शख्स ने गैर की बांदी से निकाह कर लिया, तो आपने पढ़ा है कि इस सूरत में जो औलाद होगी उसका नसब तो खावन से साबित है, अलबत्ता ये औलाद जो है बांदी के मालिक की ममलूक होगी। इस बांदी से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम और बांदियां होंगे इसी बांदी के आका के, अलबत्ता उनका नसब इस खावंद से साबित होगा क्योंकि ये बांदी फिराश है इस खावंद का भाई। तो अब सूरत ये है, एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया और उससे उसकी औलाद पैदा हुई और फिर बाद में इसी खावंद ने इस बांदी को खरीद लिया, ये जो इसकी बीवी थी इसको इसने आका से खरीद लिया, ये उसका मालिक बन गया। तो खरीदते ही निकाह खत्म हुआ और ये बांदी अब इसकी ममलूका है और इंदल अहनाफ याद रखो अब ये इसकी उम्मे वलद बन गई क्योंकि आका की इस बांदी से औलाद है भाई, तो ये इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये इसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी, ये इसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी। दलील भी यहीं पर समझ लीजिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उम्मे वलद बांदी उस वक्त बनती है जब उसमें आजाद हमल करार पाए, यानी जब बांदी आजाद बच्चे के साथ हामिला हो फिर वो उम्मे वलद बनती है, अगर वो आजाद बच्चे के साथ हामिला नहीं होगी तो वो उम्मे वलद भी नहीं हो सकती। चुनांचे इसीलिए मसलन एक शख्स की अपनी बांदी है और इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया और आका ने कह दिया ये मेरा बच्चा है, तो ये बांदी इस आका की उम्मे वलद बन जाएगी और ये बच्चा इस वक्त से आका का नहीं शुमार होगा कि अब से ये आका का है, बल्कि जिस वक्त हमल ठहरा था, हमल ने करार पकड़ा था, जिस वक्त बांदी हामिला हुई थी उसी वक्त से इस बच्चे का नसब इस आका से साबित है, और जब ये इस आका का बच्चा है, इस आका का हमल है, तो ये आजाद हमल है, ये आजाद हमल है। मालूम हुआ उम्मे वलद वो बांदी बन सकती है जिसके अंदर आजाद हमल करार पाए। तो आका का अपना हमल तो उसका ममलूक नहीं हो सकता, वो तो आजाद ही है। तो उम्मे वलद वो बांदी बनती है जिसके अंदर आजाद हमल करार पाए। जबकि ये जो बांदी है, ये जो खावंद ने खरीद ली है बाद में, इससे खावंद के जो बच्चे हुए थे वो तो उस पहले आका के ममलूक हैं भाई। तो इस बांदी के अंदर आजाद हमल ने करार नहीं पकड़ा, बल्कि ये ममलूक के साथ हामिला हुई थी, इसका हमल ममलूक था, लिहाजा ये उम्मे वलद नहीं बन सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ये खावंद अपनी उस मनकूहा बांदी को अगर खरीद भी ले, जिससे इस खावंद की औलाद हो चुकी है, खावंद इस मनकूहा बांदी को खरीद भी ले, फिर भी ये इसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी। क्योंकि उम्मे वलद बनने के लिए क्या जरूरी है कि वो बांदी आजाद हमल के साथ हामिला हो, और ये बांदी तो आजाद हमल के साथ हामिला नहीं हुई थी। अगरचे बच्चे खावंद के थे लेकिन बांदी के आका के ममलूक थे, तो ये ममलूक हमल के साथ हामिला हुई थी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई बांदी उम्मे वलद उस वक्त बनेगी जब वो आजाद हमल के साथ हामिला हो। वजह यह कि जब हमल आजाद होगा तो हमल तो जुज है बांदी का, और जुज जो है कुल के मुखालिफ नहीं होता। तो ये आजाद जुज तकाजा कर रहा है कि ये बांदी भी आजाद होनी चाहिए। जब जुज आजाद है तो बांदी को भी क्या होना चाहिए? आजाद। तो ये आजाद तो नहीं हुई लेकिन आजादी की मुस्तहिक हो जाएगी। तो जुज जब आजाद है तो बांदी यानी कुल भी आजादी का मुस्तहिक हो जाएगा। तो इस तरह वो उम्मे वलद बनेगी भाई, क्योंकि उम्मे वलद आजादी की मुस्तहिक होती है। बात समझ में आ गई। जबकि हमारे नजदीक ये जो उम्मे वलद आजादी की मुस्तहिक होती है उसकी वजह यह है कि आका और बांदी के दरमियान जुजियत आ गई, आका और बांदी एक दूसरे का जुज बन गए, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ वो दोनों का जुज है भाई। तो आका और बांदी एक दूसरे का जुज बन गए, और ये जुजियत दोनों में बच्चे के वास्ते से आई है, क्योंकि इस बच्चे का नसब आका से साबित है, आका ने एतराफ कर लिया। तो दोनों के दरमियान, आका और बांदी के दरमियान जुजियत आ गई बच्चे के वास्ते से, क्योंकि बच्चे का नसब आका से साबित है। तो इस बच्चे की निस्बत दोनों की तरफ की जाती है, ये दोनों का जुज है, तो आका और बांदी में जुजियत आ गई। लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हो गई और वो मां से जुदा हो गया तो हकीकतन तो जुजियत न रही, अलबत्ता हुक्मन अभी भी जुजियत है, ये आजादी का सबब बनेगी, लेकिन ये सबब कमजोर हो चुका है। तो लिहाजा अब बांदी मौत के बाद आजाद होगी, अलबत्ता फिलहाल आजादी के कुछ अहकाम साबित हो जाएंगे, यानी अब इस बांदी को बेचना भी जायज नहीं और किसी दूसरे को इसका मालिक बनाना भी जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उम्मे वलद होने का सबब वो ये है कि बांदी आजाद हमल के साथ हामिला हो, आजाद हमल के साथ। जबकि हमारे नजदीक उम्मे वलद होने का सबब वो आका और बांदी के दरमियान जुजियत है कि दोनों एक दूसरे का जुज बन गए बच्चे के वास्ते से भाई। तो कहते हैं वमन इस्तौलदा अमत गैरिही बिनिकाहिन। इस्तौलदा भाई, इस्तौलदा का माना है उम्मे वलद बनाना, लेकिन यहां उम्मे वलद बनाना यह तर्जमा ना करें, वही तर्जमा करें जो मैंने शुरू बाब के अंदर जिक्र किया था कि इस्तीलाद का क्या माना है, औलाद तलब करना। तो यहां पर भी जब एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया है तो ये इसको उम्मे वलद नहीं बना रहा, इससे औलाद तलब कर रहा है। तो कहते हैं वह मनिस्तौलद अमत गैरिही बिन निकाहिन, और जिसने औलाद तलब की गैर की बांदी से निकाह के जरिए, सुम्मा मलकहा, फिर ये खावन जो है ये इस बांदी का मालिक बन गया, सारत उम्मा वलदिन लहू, तो ये बांदी इस खावन की उम्मे वलद बन गई हमारे नजदीक। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला तसीरु उम्मा वलदिन लहू, कि यह बांदी जो है खावन की उम्मे वलद नहीं बनेगी। ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا وله فيه قولان. دوسری صورت بھائی، ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہو گئی، تو یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ام ولد ہو گئی ہے، لیکن اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا. مثلا زید نے اس باندی کو دیکھ لیا تو وہ آ گیا اور قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے. چنانچہ قاضی نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا اور زید اس باندی کو لے کر چلا گیا. تو اب دیکھو، معلوم ہوا یہ جو دوسرا آقا تھا یہ اس کی ام ولد نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ تو باندی کا مالک ہی نہیں تھا. ام ولد ہونے کے لیے کیا ضروری کہ باندی کا مالک ہو بھائی، تو یہ باندی کا مالک ہی نہیں ہے. پھر بعد میں اس دوسرے آقا نے اس پہلے آقا سے، یعنی وہ جو اصلی آقا تھا، اس سے اس باندی کو خرید لیا، تو یہ دوسرا آقا اب دوبارہ باندی کا مالک بن گیا، تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی عند الاحناف. ہمارے نزدیک اب یہ کیا بن گئی؟ اس کی ام ولد بن گئی، کیونکہ اس باندی سے اس کی اولاد ہو چکی ہے، اور اس باندی کے درمیان اور اس آقا کے درمیان جزئیت آ چکی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولو استولدها بملک یمین، اور اگر اولاد طلب کی باندی سے بملک یمین، ملک یمین کے ذریعے، یعنی اس کا مالک بنا، اس کو خریدا، ثم استحقت، پھر اس باندی کا استحقاق نکل آیا، یعنی کوئی اور حقدار نکل آیا، ثم ملکہا، پھر یہ دوسرا آقا جو ہے، پھر یہ والا آقا جو ہے، پھر دوبارہ اس کا مالک بن گیا. تو کہتے ہیں ثم ملکہا، پھر یہ آقا دوبارہ اس باندی کا مالک بن گیا، تصیر ام ولد له عندنا، تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی ہمارے نزدیک. ولہ فیہ قولان، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق یہ اس کی ام ولد بنے گی، اور دوسرے قول میں ہے کہ یہ اس کی ام ولد نہیں بنے گی. وہو ولد المغروری، اور یہ جو بچہ ہے وہ ولد المغرور ہے. مغرور بھائی، مغرور کا معنی ہے وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. غرور کا کیا معنی؟ دھوکہ دینا. تو مغرور وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. بھائی دیکھیے، ایک شخص ایک باندی سے نکاح کرتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ باندی سے جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ اس باندی کے آقا کی مملوک ہوتی ہے. تو جب یہ شخص ایک باندی سے نکاح کر رہا ہے، معلوم ہوا یہ اپنے بچوں کے مملوک ہونے پر راضی ہے. تو جب بھی کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرتا ہے، معلوم ہوا وہ اپنے بچوں کے مملوک ہونے پر راضی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، عورت نے کہا میں آزاد ہوں، لیکن بعد میں پتا چلا یہ باندی ہے، اور اس عورت سے، اس باندی سے اس شخص کی اولاد بھی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ باندی جس کی مملوک ہوتی ہے اولاد بھی اس کی مملوک ہوتی ہے، تو یاد رکھو یہ جو شخص ہے اس کو کہیں گے مغرور، یعنی اس کو دھوکہ دیا گیا. اس عورت نے تو کہا تھا میں آزاد ہوں اور یہ تو باندی نکلی. یا دوسری صورت ہے، آقا نے خود ہی اپنی باندی کا کسی سے نکاح کروا دیا. آقا نے خود ہی کسی سے اپنی باندی کا نکاح کروایا اور کہا یہ آزاد عورت ہے. یا جیسے اس مسئلے کے اندر ہے کہ ایک شخص نے باندی کو خریدا اور اس سے اولاد ہو گئی، اور بعد میں اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو یاد رکھو اس قسم کی باندی جس کے خاوند کو پتا ہی نہ ہو یہ باندی ہے، اس سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو ولد المغرور کہتے ہیں. دھوکہ دیے ہوئے شخص کی اولاد، دھوکہ دیے ہوئے شخص کی اولاد، اور یہ تو اپنے اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میری بیوی باندھی ہے، تو یہ اپنی اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں. تو اس صورت میں یاد رکھو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی اولاد آزاد ہوگی، لیکن اس اولاد میں اس مالک کا حق تھا، یہ اس کی مملوک تھی، لیکن اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اولاد آزاد ہے. البتہ اب اس باپ کو اولاد کی قیمت دینا پڑے گی اس باندی کے آقا کو. تو ولد المغرور جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے قیمت کے عوض. ولد المغرور آزاد ہوتا ہے قیمت کے عوض، کیونکہ اس شخص کو دھوکہ دیا گیا تھا، یہ اپنی اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں. تو ہم نے دونوں کی رعایت رکھی، اس کو اس کا بچہ آزاد مل گیا، और वो जो बांदी का मालिक था उसको उसका हक मिल गया यानी कीमत मिल गई, तो दोनों की रियायत हो गई, सूरत समझ में आ गई। तो जाब्ता क्या है कि वलदुल मगरूर कीमत के इवज आजाद होता है। तो यहां पर भी कहते हैं वह हुआ वलदुल मगरूरी कि इसके जो औलाद है वो मगरूर की औलाद है। ये जो दूसरे मसले में बांदी का कोई और मुस्तहिक निकल आया था, जब कोई और मुस्तहिक निकल आया तो ये जो आका है, ये जो मौजूदा आका है, ये औलाद की कीमत इसको देना पड़ेगी उस पहले आका को भाई, और इसके बच्चे आजाद होंगे उस कीमत के अवज में। ये माना है वह हुआ वलदुल मगरूरी और इसकी जो औलाद है वो मगरूर की औलाद है, यानी वो कीमत के अवज आजाद होगी। लहू, अब इमाम शाफी रहमुल्ला की दलील आ गई। मैंने दलील जिक्र कर दी थी कि इमाम शाफी रहमुल्ला के नजदीक क्या जरूरी है, उम्मे वलद तभी बन सकती है जब वो आजाद हमल के साथ हामिला हो गई। तो कहते हैं लहू, इमाम शाफी रहमुल्ला की दलील यह है कि अन्नहा अलिकत बी रकीकिन, कि ये बांदी तो गुलाम के साथ हामिला हुई है। अलिका या अलकु उलूकन का माना है हामिला होना, हमल का करार पकड़ना। लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहा अलिकत बी रकीकिन, की ये बांदी तो गुलाम के साथ हामिला हुई है। दो सूरतें हैं, एक सूरत जिसमें एक शख्स ने बांदी से निकाह किया था तो इस बांदी का जो हमल ठहरा वो ममलूक था, और दूसरी सूरत के अंदर बांदी का एक और शख्स मुस्तहिक निकल आया था तो वहां पर भी बांदी के अंदर जो हमल करार पाया था वो ममलूक था। वो वलदुल मगरूर क्या था, वो तो ममलूक था, वो कीमत के अवज आजाद होता है। तो इन दोनों मसलों के अंदर ये जो हमल ठहरा है वो गुलाम है, और हालांकि उम्मे वलद वो होती है कि जिसमें आजाद हमल करार पाए भाई। तो लहू, इमाम शाफी रहमतुल्ला की दलील ये है कि अन्नहा अलिकत बी रकीकिन, की ये बांदी जो है हामिला हुई है गुलाम के साथ। फला तकून उम्म वलदिन लहू, तो लिहाजा ये इसकी उम्म वलद नहीं हो सकती। कमा इदा अलिकत मिन अज़्ज़िना, जैसे कि किसी गैर की बांदी जीना से हामिला हो जाए। सुम मलका हज़ानी, फिर जानी जो है उसका मालिक बन जाए। भाई सूरत ये, एक शख्स ने किसी गैर की बांदी से जिना किया और जिना से वो बांदी हामिला हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया, बाद में इस जानी ने इस बांदी को खरीद लिया, तो याद रखो ये बांदी इसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी। अगरचे इस बांदी से इसकी औलाद हो चुकी है लेकिन फिर भी ये उम्मे वलद नहीं बनेगी भाई। क्यों उम्मे वलद क्यों नहीं बनेगी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। वो फरमाते हैं वजह यह है कि ये बांदी गैर की थी, तो जब ये हामिला हुई तो इसका हमल ममलूक है इसके आका का, तो ये बांदी आजाद हमल के साथ हामिला नहीं हुई, बल्कि ये जो मजनिया बांदी है ये आजाद हमल के साथ हामिला नहीं हुई बल्कि ममलूक हमल के साथ हामिला हुई है। इसलिए अगर जानी इसको खरीद भी लेगा ये फिर भी उसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी भाई। तो ये माना है, कहते हैं कमा इदा अलिकत मीना जीना, जैसे कि बांदी हामिला हो जाए जीना से। सुम मम्मा लका हज़ानी, फिर जानी जो है उसका मालिक बन जाए, तो जैसे ये जानी के लिए ये उम्मे वलद नहीं बनती ये मजनिया बांदी, इसी तरह पिछले मसले के अंदर वो खावंद अपनी बीवी को खरीद भी ले तो भी उसकी वो उम्मे वलद नहीं बनेगी। कहते हैं वहादा ली अन्न उमूमियत अल वलदी बेअते बार उलूक अल वलदी हुर्रन, कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लि अन्न उमूमियत अल वलदी, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद होना बेअतबार उलूक अल वलदी वो इस एतबार से होता है कि बच्चे का हमल करार पाए हुर्रन, इस हाल में कि वो बच्चा आजाद हो, बच्चे के आजाद होने की हालत में हमल करार पाए तो फिर ही उम्मे वलद बनती है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा ली अन्न उमूमियत अल वलदी बेअतबार उलूक अल वलदी हुर्रन, और ये इस वजह से कि उम्मे वलद होना वो उस बच्चे के आजाद होने की हालत में हमल का ठहरना होता है। लिअन्नहु जुज़ुल उम्मी फी तिलकल हालती, इसलिए क्योंकि ये जो बच्चा होता है ये मां का जुज होता है उस हालत में, यानी जब हमल ठहरता है। तो ये उस हालत में मा का जुज होता है। वल जुज उला युखालिफुल कुल्ला, और जुज जो है वो कुल के मुखालिफ नहीं होता। तो जब जुज आजाद है तो ये जुज तकाजा करता है कि ये बांदी आजादी की मुस्तहिक हो जाए, यानी उम्मे वलद हो जाए। ये माना है लिअन्नहु जुज उल उम्मी फी तिलकल हालति, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है हमल ठहरने की हालत में मां का जुज होता है। वल जुज उला युखालिफुल कुल्ला, और जुज जो है वो कुल के मुखालिफ नहीं होता। तो ये जुज जो आजाद है ये तकाजा करता है कि कुल भी यानी मां भी आजादी की मुस्तहिक हो जाए। वलना, अब हमारी दलील आ गई, हमारे नजदीक उम्मे वलद का सबब जुज़ियत है भाई। वलना, हमारी दलील यह है कि अन्ना सबब हुवल जुज़ियतु, के उम्मे वलद होने का सबब जो है वो जुज होना है। अला मा ज़करना मिन क़ब्लु, उस वजह से जो हमने पहले जिक्र कर दिया। वल जुज़ियतु इन्नमा तस्बुतु बैनहुमा बिनिस्बतिल वलदिल वाहिदि इला कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा कमला। और भाई जुज़ियत आका और बांदी में या वाती और मौतुआ में जुज़ियत किस तरह आती है कि वो जो औलाद है उसकी निस्बत दोनों की तरफ की जाती है। एक ही बच्चे की निस्बत कभी कभी खावंद की तरफ कर देते हैं, बाप की तरफ कर देते हैं कि ये फुला आदमी का बच्चा है, और कभी उसी बच्चे की निस्बत मां की तरफ कर देते हैं कि ये फुलानी का बच्चा है। तो मालूम हुआ ये बच्चा दोनों का जुज है। जब दोनों का जुज है तो यहां दोनों के जुजों में इत्तेहाद आ गया। तो कहते हैं वल जुज़ियतु इन नमा तस्बुतु बैनहुमा, और जुज़ियत जो है वो इन दोनों के दरमियान यानी आका और बांदी के दरमियान साबित होती है। बिनिस्बतिल वलदिल वाहिदी इला कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा कमला, इस वजह से कि निस्बत होती है एक ही बच्चे की इन दोनों में से हर एक की तरफ। कमला पूरे तौर पर, एक ही बच्चे की पूरे तौर पर हर एक की तरफ निस्बत की जाती है। पूरे बच्चे के बारे में ही कह देते हैं ये फलां का बच्चा है, बाप की तरफ निस्बत की, या पूरे बच्चे की ही निस्बत कर दी जाती है मां की तरफ। दोबारा तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वल जुज़ियतु इन्नमा तस्बुतु बैनहुमा, के जुज़ियत इन दोनों के दरमियान यानी वाती और मौतुआ के दरमियान साबित हो जाती है। बिनिस्बतिल वलदिल वाहिदी इला कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा कमला, इस वजह से कि निस्बत की जाती है एक ही बच्चे की इन दोनों में से हर एक की तरफ। कमला पूरे तौर पर। वक़द सबतन नसबु, और तहकीक यहां पर नसब साबित है, हमारे इस मसले में नसब साबित है, क्योंकि जो बच्चा हुआ था वो निकाह की वजह से हुआ है जी। तो नसब साबित है। तो कहते हैं वक़द सबतन नसबु, और यहां पर नसब बच्चे का साबित है। फयसबुतुल जुज़ियतु बिहादिहिल वासितति, तो जुज़ियत भी साबित हो जाएगी इस वास्ते के जरिए, इस वास्ते से जुज़ियत भी साबित हो जाएगी। जब नसब साबित है तो यहां जुज़ियत भी साबित हो गई, क्योंकि बच्चे का नसब साबित है। जब जुज़ियत साबित हो गई है तो अब इस बांदी को जब खावंद खरीदेगा तो ये इसकी उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि जुज़ियत साबित है भाई। ये माना है कि वक़द सबतन नसबु, कि यहां नसब तो साबित है। फयसबुतुल जुज़ियतु बिहादिहि अलवासितति, तो जुज़ियत भी साबित हो जाएगी इस वास्ते के जरिए। बिखिलाफ ज़िना, बखिलाफ ज़िना के। यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कियास का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इस निकाह वाले मसले को कियास किया था जिना वाले मसले पर, कि जैसे जानी जो है अगर वो उस बांदी को खरीद भी ले जिस बांदी ने जिना से इसके बच्चे को जन्म दिया था, तो भी ये बांदी जानी की उम्मे वलद नहीं बनती, चाहे जानी खरीद भी ले। तो हम उसका जवाब देते हैं कि वो वजह यह है कि दोनों के दरमियान जो जुज़ियत आती है वाती और मौतुआ के दरमियान, वो बच्चे के वास्ते से आती है, और ये जो जिना से बच्चा पैदा हुआ है इसका तो नसब साबित नहीं है। जब इसका नसब साबित नहीं है तो वाती की तरफ इसकी निस्बत नहीं है, जब वाती की तरफ इसकी निस्बत नहीं है तो वाती और मौतुआ में जुज़ियत भी ना आई। जुज़ियत तो तब आएगी जब उस बच्चे की निस्बत दोनों की तरफ की जाए, और यहां तो बच्चे की निस्बत दोनों की तरफ नहीं की जा रही, सिर्फ उस बांदी की तरफ तो बच्चे की निस्बत की जा रही है कि इसका बच्चा है, लेकिन उस जानी की तरफ तो उसकी निस्बत नहीं है, क्योंकि नसब नहीं साबित भाई। तो जब बच्चे की निस्बत दोनों की तरफ नहीं तो जुज़ियत भी साबित नहीं, जब जुज़ियत साबित नहीं है तो ये उसकी उम्मे वलद भी नहीं बनेगी। तो कहते हैं बिखिलाफ ज़िना, बखिलाफ ज़िना के। लिअन्नहु ला नसब फीही लिलवलदि इला ज़ानी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर बच्चे का नसब नहीं होता। इला ज़ानी, ज़ानी की तरफ, बच्चे का नसब ज़ानी की तरफ साबित नहीं होता। वइन्नमा यातिकु अला ज़ानी इदा मलकहु, यहां से के एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये اعتراض یہ کہ اے احناف آپ نے کہا زانی اگر اسی باندی کو خرید لے تو یہ اس کی ام ولد نہیں بنتی جی. کیونکہ بچے کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہے بھائی. تو پھر تو اس بچے کو اگر یہ زانی خرید لے تو پھر اس کو آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے جی. اس بچے کو جو زانی کا اپنا بچہ ہے لیکن زنا سے پیدا ہوا ہے, اس کو اگر زانی خرید لے تو اس بچے کو بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نسب ثابت نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں بچہ آزاد ہوگا اس وجہ سے کہ یہ جو بچہ ہے یہ حقیقتاً اس آدمی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. تو بغیر واسطے کے چونکہ اسی زانی کا بچہ ہے اس لیے یہ بچہ آزاد ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہ ان نما یاتق الزانی, اور یہ بچہ جو ہے زانی پر آزاد ہو جائے گا, اذا ملکہ جب وہ اس بچے کا مالک بن جائے, لانہ جزءہ حقیقتا بغیر واسطت, اس لیے کیونکہ یہ بچہ اس زانی کا جز ہے حقیقتا حقیقت کے اعتبار سے, بغیر واسطت بغیر کسی واسطے کے, یہ بچہ بغیر کسی واسطے کے اس زانی کا جز ہے جبکہ ام ولد ہونے کے اندر بچے کا واسطہ موجود ہوتا ہے واطی اور موتوعہ کے درمیان, لیکن یہاں پر یہ جو بچہ ہے یہ اس زانی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے, اس لیے زانی اس کا مالک بنے گا تو یہ آزاد ہو جائے گا. جبکہ واطی اور موتوعہ کے درمیان جو جزئیت آتی ہے وہ بغیر واسطے کے نہیں ہوتی بلکہ وہ بچے کے واسطے سے ہوتی ہے, لہذا بچے کی دونوں طرف نسبت ضروری ہوتی ہے. اور زنا کے اندر تو باپ کی طرف نسبت نہیں ہوتی بچے کی, لیکن یہاں پر تو یہ جو بچہ ہے یہ زانی کا بغیر واسطے کے جز ہے, لہذا اس کو زانی خریدے گا تو یہ فوراً آزاد ہو جائے گا. تو یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الزَّانِ إِذَا مَلَكَهُ, اور یہ بچہ جو ہے زانی پر آزاد ہو جائے گا جب زانی اس کا مالک بنے, لِأَنَّهُ جُزْءُهُ حَقِيقَةً بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ, اس لیے کیونکہ یہ بچہ جو ہے حقیقت کے اعتبار سے اسی زانی کا جز ہے, بغیر واسطتین بغیر کسی واسطے کے, نظیرہ اس کی نظیر جو ہے, من اشترا اخاہ من الزنا, کہ جس نے خریدا اپنے بھائی کو جو زنا سے ہے, لا یعتق علیہ, وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا. بھئی اس کی نظیر یہ جو زنا سے ام ولد ہونا ہے, زنا سے ام ولد ہونا ہے, زنا کی وجہ سے ام ولد نہیں بنے گی کیونکہ وہ جو واسطہ ہے اس کی نسبت دونوں کی طرف نہیں ہو رہی. تو اس کی نظیر جو ہے, اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے زنا سے ہونے والے بھائی کو خریدے, کہ اس کے باپ نے زنا کیا اور اس سے بھائی پیدا ہوا, تو یہ شخص جب اپنے زنا سے پیدا ہونے والے بھائی کو خریدے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا. اس پر وہ زانی اپنے بچے کو خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ براہ راست زانی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے, لیکن یہاں اگر بھائی اپنے زنا سے ہونے والے بھائی کو خریدے گا تو یہ بھائی اس پر آزاد نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ یہاں پر واسطہ ہے, ایک بھائی کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف باپ کے واسطے سے ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں بھائی, باپ کی نسبت سے ہوتی ہے یا ماں کی نسبت سے ہوتی ہے جب دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہوں, تو لہذا ایک بھائی کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف باپ کے واسطے سے ہو رہی ہے, اور ایک بھائی کا نسب تو ثابت ہے اور دوسرا تو زنا سے پیدا ہوا ہے اس کا نسب تو ثابت نہیں, تو لہذا یہاں پر یہ زنا سے ہونے والا بھائی دوسرے بھائی پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں واسطہ ہے باپ, اور اس واسطے کی طرف دونوں کی نسبت نہیں ہو رہی, ایک کی نسبت تو ہو رہی ہے اس کا نسب تو ثابت ہے, دوسرے کی نسبت نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں نظیرہ, اس زنا سے ام ولد ہونے کی نظیر جو ہے, من اشترا اخاہ من الزنا, جس نے اپنے ایسے بھائی کو خریدا جو زنا سے ہے, تو لا یعتق علیہ, یہ اس پر آزاد نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا یہ علاتی بھائی کی بات ہو رہی ہے, یعنی باپ شریک ہے, یعنی ایک بھائی اس کا نسب ثابت ہے اور دوسرا زنا سے ہوا ہے, یعنی ایک ہی باپ کی دونوں اولاد ہیں بھائی. اگر ماں شریک بھائی ہوئے تو پھر اس صورت میں بھائی آزاد ہو جائے گا. وجہ یہ کہ وہاں ماں کی طرف تو نسبت ہوتی ہے بھائی کہ یہ فلانی کا بچہ ہے, زنا سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس زانی کی طرف تو نسبت نہیں ہوتی, لیکن مزنیہ کی طرف تو نسبت ہوتی ہے کیونکہ اسی نے تو بچے کو جنم دیا ہے, تو کہتے ہیں یہ اس کا بچہ ہے. تو لہذا اگر ماں شریک بھائی کو خریدا جو زنا سے ہے, तो वहां तो निस्बत साबित है, दोनों भाइयों की निस्बत उसी मां की तरफ हो रही है, तो फिर तो भाई आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर बाप शरीक भाई को खरीदा जो जिना से हुआ है, तो फिर इसमें उस जिना से होने वाले बच्चे की निस्बत तो बाप की तरफ साबित नहीं। तो जब निस्बत साबित नहीं है तो फिर अब भाई भी आजाद नहीं होगा। यह माना है नजीरुहु, और जिना से उम्मे वलद होने की जो नजीर है, मनिश्तारा आखाहु मिना जिना, जिसने खरीदा अपने ऐसे भाई को जो जिना से है, ला यातिकु अलैहि, वो उस पर आजाद नहीं होगा, लिअन्नहु युनसबु इलैहि बिवासितति निस्बतिही इलल वालिदी, लिअन्नहु युनसबु इलैहि, इसलिए क्योंकि एक भाई जो है उसकी निस्बत की जाती है दूसरे भाई की तरफ, बिवासितति निस्बतिही इलल वालिदी, उसके वालिद की तरफ निस्बत के वास्ते से। एक भाई की निस्बत दूसरे भाई की तरफ की जाती है उसके वालिद की तरफ निस्बत के एतबार से, कि दोनों की निस्बत वालिद की तरफ हो रही है, और वो तो यहां पर साबित नहीं है। एक भाई की तो निस्बत वालिद की तरफ साबित है, लेकिन दूसरे की जो जिना से हुआ है उसकी निस्बत तो वालिद की तरफ साबित नहीं है। तो कहते हैं लिअन्नहु युनसबु इलैही, इसलिए क्योंकि एक भाई जो है उसकी निस्बत की जाती है दूसरे भाई की तरफ, बिवासितति निस्बतिही इलल वालिदी, वालिद की तरफ उसकी निस्बत के वास्ते से, वही गैरु साबितिन, और ये वालिद की तरफ जो निस्बत है ये तो साबित नहीं है। सूरत समझ में आ गई। तो ये मसला नजीर है, नजीर है जिना से उम्मे वलद की। जैसे जिना से उम्मे वलद होना साबित नहीं होता, इसी तरह भाई भी अगर अपने दूसरे भाई को खरीदेगा जो जिना से हुआ है तो ये उस पर आजाद नहीं होगा क्योंकि निस्बत नहीं साबित। जैसे जिना के से उम्मे वलद नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे की निस्बत बाप की तरफ साबित नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे की नजीर हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वइदा वती अजारिया तबनी ही फजाअत बिवलदिन फदाअहु सबता नसबहु मिनहु वसारत उम्म वलदिन लहू वअलैहि क़ीमतुहा वलैसा अलैहि उक़रुहा वला क़ीमतु वलदिहा। भाई ये मसला पहले गुजर चुका है कि अगर बाप बेटे की बांदी से वती कर ले और फिर इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बाप ने दावा कर दिया कि यह मेरी औलाद है, तो यह बांदी बाप की उम्मे वलद बन जाएगी। वजह यह कि बाप जो है उसका बेटे के माल में हक तमल्लुक है। तमल्लुक का माना है मालिक बनना, यानी बाप यह हक रखता है कि वो बेटे के माल का मालिक बन जाए जब हाजत और जरूरत पेश आए। क्योंकि हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया, अंत व मालुक अली अबी का, कि तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हैं। दीगर हदीस से तो पता चलता है कि बाप का माल अलग होता है और बेटे का माल अलग होता है, लेकिन इस हदीस के अंदर हुजूर फरमा रहे हैं अंत व मालुक अली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं, तो इसकी वजह से शुबा आ गया। तो लिहाजा हमने दोनों हदीसों पर अमल किया। बाज हदीसों से पता चल रहा है कि बाप और बेटे का माल अलग है, तो हमने भी यही फैसला किया कि बाप और बेटे का माल अलग अलग है, और इस हदीस से पता चल रहा है कि बेटा और बेटे का माल बाप का है, तो हमने कहा कि इसका माना यह है कि बाप बेटे के माल का मालिक बनने का हक रखता है। जब भी बाप को हाजत और जरूरत पेश आएगी तो वह बेटे के माल का मालिक बन जाएगा। चुनांचे अगर बाप के पास नफका वगैरह नहीं है तो इस सूरत में वो बेटे का माल इस्तेमाल कर सकता है और बाप पर जमान भी नहीं आएगा, क्योंकि बाप को अपनी जान बचाने की हाजत है। भाई तो जैसे बकाए नफ्स जो है वो इंसान की हाजत असलिया है, इसी तरह बकाए नस्ल भी जो है वो इंसान की हाजत असलिया है भाई। लिहाजा बकाए नफ्स के अंदर वो बेटे के माल में से नफका ले लेता है तो वो बाप उसका मालिक बन गया, अब वो बेटे को कीमत नहीं अदा करेगा। इसी तरह बकाए नस्ल का भी इंसान मोहताज है, तो बाप ने जब बेटे की बांदी से वती की और उससे औलाद हुई और बाप ने कहा कि ये मेरी औलाद है, तो ये बाप की उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि इंसान बकाए नस्ल का मोहताज है। लेकिन बकाए नस्ल बकाए नफ्स के मुकाबले में कम दर्जे की है। बकाए नफ्स वो तो जरूरी ज्यादा जरूरी है बकाए नस्ल के मुकाबले में। तो बकाए नफ्स के मामले में जब वो बाप नफका लेता था, नफका खाता था बेटे के माल में से, तो बाप पर जमान नहीं आता था, जबकि बकाए नस्ल उससे कम दर्जे की है, लिहाजा यहां पर बाप बेटे की बांदी का मालिक बन जाएगा लेकिन उसको कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि बकाए नस्ल कम दर्जे की है बकाए नफ्स के मुकाबले में। बाप मालिक तो बन जाएगा लेकिन कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि अब ये बांदी बाप की ममलूका हो गई, उसकी उम्मे वलद बन गई। तो देखिए किताब पर कहते हैं इदावती अजारिया तबनी ही, और जब एक शख्स ने अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली, फजा अत भी वाला दिन, तो वो एक बच्चे को ले आई, यानी उसने बच्चे को जन्म दिया, फदाहू, तो फिर उस बाप ने दावा कर दिया उस बच्चे का, तो सब अतन न सबूहू मीन हू, तो उस बच्चे का नसब बाप से साबित हो जाएगा, व सारत उम्मा वाला दिन लहू, और ये बांदी बाप की उम्मे वलद हो जाएगी, व अलई ही कीमतुहा, और बाप पर इस बांदी की कीमत वाजिब होगी, वो कीमत अभी से देना पड़ेगी, वलैसा अलैहि उकरुहा वला कीमतु वलदिहा, और बाप पर उकर भी नहीं होगा इस बांदी का और ना इस बच्चे की कीमत होगी। उकर मैंने आपको बतलाया था कि उकर महर को कहते हैं, लेकिन महर तो निकाह के अंदर आता है, महर निकाह के अंदर आता है, और यहां तो निकाह नहीं हुआ, बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत की है। तो याद रखो ममलिकत इस्लामिया के अंदर जब भी सोहबत होगी तो वो दो चीजों से खाली नहीं, या तो वहां हद आएगी, क्या आएगी, हद आएगी, हद जिना, और या वहां पर उकर देना पड़ेगा। तो यहां पर जो है, यहां पर बाप पर उकर यानी महर भी नहीं आएगा, वजह यह कि वहां मसले की तफसील गुजरी थी किताबुन निकाह में, और वहां साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि यह बांदी बाप की उम्मे वलद बन गई, और उम्मे वलद अपनी ममलूका बांदी बनती है, गैर की बांदी किसी की उम्मे वलद नहीं बन सकती, लिहाजा उम्मे वलद होने के लिए जरूरी है कि बाप की मिल्कियत पहले से साबित कर दी जाए, हमल ठहरने से भी पहले बाप की मिल्कियत साबित कर दी जाए। तो लिहाजा बाप की मिल्कियत मुकद्दम शुमार की जाएगी वती पर, कि ऐन वती से पहले बाप इस बांदी का मालिक ही बन गया, क्योंकि फिर ही ये इसकी उम्मे वलद हो सकती है, अगर मालिक नहीं बनेगा तो फिर उम्मे वलद भी नहीं बई। तो लिहाजा ऐन वती से पहले ये बाप इस बांदी का मालिक बन गया, जब मालिक बन गया तो अब जो ये वती कर रहा है अपनी बांदी के साथ वती कर रहा है, बेटे की बांदी अब ये रही ही नहीं, जब बाप अपनी बांदी से वती कर रहा है तो अपनी बांदी की साथ सोहबत की जाए, फिर तो महर नहीं आता भाई, लिहाजा यहां महर भी बाप पर वाजिब नहीं, यानी उकर वाजिब नहीं होगा। और जब अपनी बांदी से वती की है तो जो बच्चा पैदा हुआ वो अपनी बांदी से बच्चा पैदा हुआ है, बेटे की बांदी से बच्चा नहीं पैदा हुआ, लिहाजा बच्चे की कीमत भी अब बेटे को नहीं देना पड़ेगी, बाप के जिम्मे अब बच्चे की कीमत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी बांदी से बच्चा हुआ है, बेटे की बांदी से बच्चा नहीं हुआ। यह माना है वलैसा अलैहि उकरुहा, और बाप पर इस बांदी का उकर यानी महर भी नहीं होगा, वला कीमतु वलदिहा, और बाप पर इस बच्चे की कीमत भी नहीं होगी। وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب, और तहकीक हमने ये मसला दलीलों के साथ जिक्र किया था इसी किताब के अंदर किताबुन निकाह में, इन्नमा ला यज़मनु क़ीमत अलवलदी, भाई ये बच्चे की कीमत क्यों नहीं देगा बाप, मैंने बतला दिया कि ये बच्चा किससे हुआ है, अपनी बांदी से हुआ है, लिहाजा इसकी कीमत भी बेटे को नहीं देगा। तो कहते हैं वह इन नमा ला यज़मनु क़ीमत अलवलदी, और बाप जो है वो बच्चे की कीमत का जामिन नहीं होगा, लिअन्नहु अलका हुर्रल असली, इसलिए क्योंकि जो बच्चा है इन अलका इसका हमल ठहरा है हुर्रल असली, हुर्रुल असल होकर असलन ही आजाद होकर यह हमल करार पाया है, भाई ये बाप सोहबत से पहले इस बांदी का मालिक बन गया, जब मालिक बन गया तो इस बच्चे का जब हमल ठहरा तो आजाद बच्चे का हमल ठहरा है, किसी के ममलूक बच्चे का हमल नहीं ठहरा। यह माना है लिअन्नहु अलका हुर्रल असली, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है ये असलन आजाद होकर इसका हमल ठहरा है, लिस्तिनादिल मिल्क इला मा कबल लिस्तिलादी, लिस्तिना दिल मिल की, इसलिए क्योंकि इसकी मिल्कियत की निस्बत की गई है इला माकबल इस्तीला दी उम्मे वलद बनाने से पहले की तरफ, इसकी मिल्कियत की निस्बत की गई है उम्मे वलद बनाने से पहले की तरफ। बाप कब मालिक बना है इस बांदी का? ऐन सोहबत से पहले। तो देखा उम्मे वलद बनाने से पहले की तरफ ही मिल्कियत की निस्बत कर दी गई है कि उससे पहले ही बाप मालिक बन गया था। जब मालिक बन गया है तो ये इसकी अपनी बांदी है और इस बांदी से जो इसका अपना हमल करार पाया तो वो भी आजाद हमल है भाई। ये माना है लिस्तिनादिल मिल्की इला मा कबला लिस्तिलादी, इस वजह से कि मिल्कियत की निस्बत की गई है उम्मे वलद बनाने से पहले की तरफ। आगे देखिए व इन वतिया अबुल अबी मा बका इल अबी लम यसबुतिन नसबु, और अगर बाप के बाप ने वती कर ली मा बका इल अबी बाप के होते हुए लम यसबुतिन नसबु तो फिर नसब साबित नहीं होगा। भाई आप पढ़ चुके हैं कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो फिर दादा बाप के मकाम पर होता है, वही अहकाम जो बाप के लिए साबित थे वो दादा के लिए भी साबित हो जाएंगे। लिहाजा अगर बाप का इंतकाल हो चुका है और दादा ने अपने पोते की बांदी से सोहबत कर ली तो वही हुक्म लगाएंगे जो बाप के लिए था कि ऐन सोहबत से पहले दादा इस बांदी का मालिक बन गया। तो ये इसकी अपनी बांदी है और बाद में जब इस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और दादा ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है तो ये दादा की उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि दादा का वही हुक्म है जो बाप का है जब बाप ना हो। लेकिन अगर बाप मौजूद है फिर दादा का यह हुक्म नहीं। लिहाजा अगर बाप मौजूद है और फिर दादा ने पोते की बांदी से सोहबत कर ली और दावा कर दिया कि इससे जो औलाद हुई है वो मेरी औलाद है तो इस सूरत में नसब साबित नहीं होगा और ये दादा की उम्मे वलद नहीं बनेगी भाई। तो कहते हैं वह इन वती अबुल अबी, और अगर बाप के बाप यानी दादा ने वती कर ली मा बका इल अबी बाप के बाकी रहते हुए लम यसबुति नसबू तो नसब साबित नहीं होगा। ले अन्नहु ला विलायत लिल जद्द हाल बका इल अबी, इसलिए क्योंकि दादा को कोई विलायत हासिल नहीं होती बाप के बाकी रहने की हालत में। वलौ कान अल अबू मैता, और अगर बाप मर चुका है तो कहते हैं वलव कान अल अबू मैतन, और अगर बाप मर चुका है यसबुतु मिनल जद्दी कमा यसबुतु नसबुहु मिनल अबी तो अब इस बच्चे का नसब दादा से साबित हो जाएगा जैसे कि बाप से नसब साबित होता है। लिजुहूरी विलायती ही इंद फकदिल अबी, बवजह दादा की विलायत के जाहिर होने के इंद फकदिल अबी बाप के न होने की सूरत में, बाप के न होने की सूरत में दादा की विलायत जाहिर होती है लिहाजा उस वक्त फिर उस बच्चे का नसब दादा से साबित हो जाएगा। तो कहते हैं लिजुहूरी विलायती ही इंद फकदिल अब, फकद का माना है न होना, लिजुहूरी विलायती ही इंद फकदिल अबी, इस वजह से कि दादा की विलायत जाहिर होती है बाप की न होते हुए। व कुफरुल अबी वरिकुहु बिमंजिलती मौती ही, और अगर बाप काफिर है या बाप गुलाम है तो काफिर को भी मुसलमान औलाद पर विलायत हासिल नहीं होती और गुलाम को भी अपनी औलाद पर विलायत हासिल नहीं होती। तो इस सूरत के अंदर चाहे बाप जिंदा ही क्यों ना हो लेकिन है काफिर या गुलाम तो भी विलायत दादा को हासिल है, तो दादा के लिए यह सारे अहकाम उस सूरत में भी साबित होंगे भाई। तो कहते हैं वकुफरुल अबी वरिकुहु बिमंजिलती मौती ही, और बाप का कुफर और उसका गुलाम होना यह बाप की मौत के दर्जे में है। लिअन्नहु कातिउल लिल विलायती, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक चीज जो है विलायत को काटने वाली है। बाप काफिर हो या गुलाम हो तो बाप को विलायत हासिल नहीं होती मुसलमान औलाद पर। आगे देखिए व इदा कानत अलजारियतु बैन शरीकैनि फजाअत बिवलदिन फदाअहु अहदुहुमा सबता नसबुहु मिन्हु, सूरत है मसला ये, एक बांदी है दो आदमी उसमें शरीक हैं तो एक मुश्तरका बांदी है दो आदमियों के दरमियान, और आप जानते हैं जब बांदी के मालिक एक से ज्यादा अफराद हों तो किसी एक के लिए भी उसके साथ सोहबत जायज नहीं, लेकिन इनमें से एक ने बांदी के साथ सोहबत कर ली और फिर उससे औलाद हुई और इसने फिर दावा कर दिया कि ये मेरी औलाद है तो ये बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी, ये बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। तो इसके लिए बांदी से सोहबत तो जायज नहीं थी, लिहाजा ये तकाजा कर रहा है कि इस पर हद जिना आनी चाहिए, लेकिन हद जिना नहीं आएगी। वजह यह कि शुबा आ गया क्योंकि आदि बांदी का तो यह मालिक है, चाहे सारी का मालिक नहीं है लेकिन आधी का तो मालिक है, और आप जानते हैं कि अदना शुबे की वजह से भी हद साकित हो जाती है, क्योंकि हद बड़ी सख्त सजा है भाई। तो मामूली शुबा भी आ जाए तो हद साकित हो जाया करती है। तो यहां भी शुबे की वजह से कि ये आधी बांदी का तुम बहरहाल मालिक था, तो हद साकित हो जाएगी, और बच्चे का नसब भी साबित हो जाएगा, क्योंकि आधी बांदी तो इसकी ममलूक थी भाई, तो बच्चे का नसब भी साबित हो जाएगा। मैंने बतलाया था कि नसब के साबित होने के लिए क्या जरूरी है, कि बांदी इसकी ममलूक हो गई। तो कहते हैं वह ईदा का नतील जारी है तू बई न शरीकैनी, और जब बांदी जो है वो दो शरीकों के दरमियान मुश्तरका हो, फचा अदबी वलदिन, फिर वो एक बच्चे को ले आई, फदाहू अहदुहू मां, तो उन दोनों में से एक ने उस बच्चे का दावा कर दिया, सब अता न सबूहू मीन हो, तो उस बच्चे का नसब उस दावा करने वाले से साबित हो जाएगा, लिया नहू लम्मा सब अतन न सबूफी निस्फी ही, इसलिए क्योंकि जब निस्फे बच्चे के अंदर नसब साबित हो गया, जब बांदी दोनों की मुश्तरका है तो जो औलाद होती वो भी दोनों की मुश्तरका होती, तो निसफ के अंदर इस दावा करने वाले की मिल्कियत है, तो जब इसने दावा कर दिया तो निसफ के अंदर नसब साबित हुआ, और जब निसफ में नसब साबित हुआ तो सारे में ही नसब साबित हो गया, क्योंकि नसब की तकसीम नहीं हो सकती, नसब की तकसीम नहीं हो सकती। तो कहते हैं लिया नहुलम मासा बतन न सबूफी निस्फी ही, इसलिए क्योंकि जब उस निसब बच्चे के अंदर नसब साबित हो गया, लि मुसादफत ही मिल कहो, मुसादफत कहते हैं मुलाकात करना, लि मुसादफत ही मिल कहो, इसलिए क्योंकि उस नसब ने मुलाकात की है इसी आदमी की मिल्कियत से, ये जो दावा करने वाला है, तो सब अता फिल बाकी, तो बाकी बच्चे के अंदर भी नसब साबित हो जाएगा, जरूरत अन्नहु ला यतजज़ऊ, इस बात के जरूरी होने की वजह से कि नसब तकसीम नहीं होता, लिमा अन्न सबबहु ला यतजज़ऊ, इस वजह से कि नसब का जो सबब है उसमें तकसीम नहीं होती, वह हुवल उलूक, और वह हमल का ठहरना है, हमल के ठहरने में तकसीम नहीं हो सकती, हमल जब भी ठहरेगा एक ही मर्द के नुतफे से हमल ठहरेगा, जब हमल के ठहरने के अंदर तकसीम नहीं हो सकती तो इस हमल ठहरने से जो नसब साबित होगा उस नसब के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती, वो एक ही शख्स से साबित होगा भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु लम्मा सबतन नसबुफी निस्फी, इसलिए क्योंकि जब निस्वे बच्चे के अंदर नसब साबित हो गया, लिमुसादफती ही मिल कहू, इसलिए क्योंकि नसब ने मुलाकात की है उसी आदमी की मिल्कियत से, सबता फिल बाकी, तो बाकी बच्चे के अंदर भी नसब साबित हो जाएगा, जरूरत अन्नहु ला यतजज़ऊ, इस बात के जरूरी होने की वजह से कि नसब तकसीम नहीं हो सकता, लिमा अन्न सबबहु ला यतजज़ऊ, इस वजह से कि नसब का जो सबब है वो तकसीम नहीं हो सकता, वह हुवल उलूक, और वो हमल का ठहरना है, इदिल वलदुल वाहिदु ला यनअलिकु मिम्मा ऐनी, इसलिए क्योंकि एक बच्चा जो है उसका हमल करार नहीं पा सकता, मिम्मा ऐनी दो मर्दों के नुतफों से, एक हमल दो मर्दों के नुतफों से करार नहीं पा सकता। तो कहते हैं इदिल वलदुल वाहिदुल ला यनअलिकु मिम्मा ऐनी, इसलिए क्योंकि एक बच्चा जो है उसका हमल नहीं हो सकता दो मर्दों के नुतफों से, वसारत उम्म वलदिन लहू, और ये बांदी जो है उस दावा करने वाली की उम्मे वलद हो जाएगी, लिअन्न अलिस्तीलाद ला यतजज़ऊ इंदहुमा। अच्छा भाई, तो ये बांदी उस एक शरीक की उम्मे वलद बन जाएगी, और किस तरह उम्मे वलद बनेगी, क्योंकि साहिबैन के नजदीक इस्तीलाद में तकसीम नहीं हो सकती, तो लिहाजा जब ये इस एक की उम्मे वलद बनी तो सारी ही इसी एक की उम्मे वलद बन गई, तो अब इसको जमान देना पड़ेगा दूसरे आदमी को, क्योंकि ये दूसरे के हिस्से का भी मालिक बन गया, और ये जमान कौन सा है, जमाने मुआवजा, इवज देगा, क्योंकि ये उसके हिस्से का मालिक बना है तो इसको भी अब इवज देना पड़ेगा, और आप जानते हैं जमाने मुआवजा वो यसार और एसार से बदलता नहीं, तो ये आदमी चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो हर हाल में इसको ये जमान देना पड़ेगा। तो साहिबैन के नजदीक इस्तीलाद की तकसीम नहीं हो सकती, जबकि इमाम साहिब के नजदीक तो इस्तीलाद की तकसीम हो सकती है, वजह यह कि तदबीर और इस्तीलाद ये फरा हैं एताक की, और एताक में तकसीम हो सकती है तो इस्तीलाद और तदबीर में भी तकसीम हो सकती है इमाम साहिब के नजदीक। तो साहिबैन के नजदीक जब एक की उम्मे वलद बनी तो सारी ही उसकी उम्मे वलद बन गई, तो जबकि इमाम साहब के नजदीक भी मसला इसी तरह है, अलबत्ता सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इमाम साहब के नजदीक पहले सिर्फ इसका अपना हिस्सा उम्मे वलद बना, इस आदमी इस शरीक का ये जो दावा करने वाला है इसका सिर्फ अपना हिस्सा उम्मे वलद बना और दूसरे शरीक का हिस्सा वो अभी भी आम बांदी है और आम बांदी तबदुल मिल को कबूल कर लेती है, उसमें इंतकाल मिल्क हो सकता है, तो लिहाजा पहले सिर्फ इसका अपना हिस्सा उम्मे वलद बना और फिर ये दूसरे के हिस्से का भी मालिक बन गया जी। तो इस्तिलाद में तकसीम आई लेकिन फिर बहरहाल ये सारी बांदी के मालिक भी बन गया, सारी बांदी उम्मे वलद भी बन गई और इसको उसका जमान देना पड़ेगा। तवज्जो है, साहिबैन के नजदीक सारी ही बांदी इकट्ठी उम्मे वलद बन गई इसकी, जबकि इमाम साहब के नजदीक सिर्फ इसका हिस्सा पहले उम्मे वलद बना और दूसरा हिस्सा वो आम बांदी है और वो इंतकाल मिल्क को कबूल करता है, लिहाजा फिर ये वहां भी इंतकाल मिल्क हुआ और ये उस हिस्से का भी मालिक बन गया और अब इसको जमान देना पड़ेगा। और अगर दूसरा हिस्सा इंतकाल मिल्क को कबूल न करता तो फिर उसने उसी तरह रहना था। मसलन अगर ये बांदी मुदब्बरा होती, दोनों शरीकों ने इसको क्या बनाया है, मुदब्बरा बनाया है, दोनों ने मुदब्बरा बनाया कि हमारे मरने के बाद तू आजाद है और फिर उसके बाद दोनों में से एक ने इसको उम्मे वलद बनाया तो दूसरे का हिस्सा उसी तरह मुदब्बरा रहेगा और ये वाला शरीक उस हिस्से का मालिक नहीं बन सकता क्योंकि मुदब्बरा इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करती। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वसारत उम्म वलदिन लहू, और ये बांदी जो है उस दावा करने वाले की उम्मे वलद हो जाएगी। लियन इस्तीलाद अला यतजज्जा इंदहुमा, इसलिए क्योंकि इस्तीलाद जो है वो तकसीम नहीं हो सकता साहिबैन के नजदीक। वाइंद अबी हनीफत रहमहुल्लाह यसीरु नसीबहु उम्म वलदिन लहू, और इमाम साहिब के नजदीक इस मुद्दाई का जो हिस्सा है वो इसका उम्मे वलद हो गया। सुम यतमल्लकु नसीब साहिबिही, फिर ये अपने साथी के हिस्से का भी मालिक बन गया। इस हुआ काबिल लिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वो हिस्सा भी मिल्कियत के काबिल है, वो इंतकाल मिल को कबूल कर लेता है। वह यजमनु निस्फ उकरिहा, और ये दावा करने वाला उस बांदी के निस्फ उकर का जामिन होगा, ये दावा करने वाला इस बांदी के निस्फ उकर का जामिन होगा। वजह यह कि निसफ का तो यह खुद ही मालिक है, उस निसफ का तो महर नहीं आएगा लेकिन बाकी निसफ तो दूसरे आदमी का था, लिहाजा उसको निस्फे उकर निस्फे महर अब इसको देना पड़ेगा। भाई तो निस्फे महर भी देगा और फिर बांदी की निस्फे कीमत भी देगा। भाई तवज्जो है, क्योंकि जब इसने सोहबत की थी तो जब सोहबत की थी तो बांदी मुश्तरका थी, जब मुश्तरका थी तो निसफ बांदी तो अपनी है, उसका तो महर नहीं लेकिन निसफ का तो महर आएगा, वो देना पड़ेगा। तो याद रखो यहां पर जब इस शख्स ने इस बांदी से सोहबत की तो सोहबत करते वक्त ये बांदी मुश्तरका थी, सोहबत करते वक्त ये बांदी मुश्तरका थी। हां जब हमल ठहरने लगा तो ऐन हमल के ठहरते वक्त ये सारी बांदी का मालिक बन गया, क्योंकि इस बांदी ने इसकी उम्मे वलद बनना है और उम्मे वलद होने का एतबार जिस वक्त हमल ठहरा है तब से करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा जब हमल ठहरने लगा तो फिर ये सारी बांदी का मालिक बन गया। तो लिहाजा सोहबत के वक्त तो ये मालिक नहीं था लेकिन हमल ठहरते वक्त मालिक बन गया। तो जब सोहबत की थी उस वक्त मालिक नहीं था लिहाजा निसफ महर देना पड़ेगा, और जब हमल ठहरा तो फिर सारी बांदी का वो मालिक बन चुका था उस वक्त तक, लिहाजा इस बच्चे की निस्फ कीमत अब नहीं देना पड़ेगी। इस बच्चे की निस्फ कीमत, क्योंकि उस हैन हमल ठहरने से पहले ये सारी बांदी का मालिक बन गया, जब सारी बांदी का मालिक बन गया तो इससे पैदा होने वाला बच्चा भी इसी का होगा, किसी और का नहीं हो सकता, लिहाजा बच्चे की निस्फ कीमत नहीं देना पड़ेगी। तो लिहाजा इस मुद्दाई को बांदी का निस्फ महर भी देना पड़ेगा और इसकी निस्फ कीमत भी देनी पड़ेगी दूसरे शरीक को। तो कहते हैं वह यजमनु निस्फ उकरिहा, और यह दावा करने वाला बांदी के निस्फ महर का भी जामिन होगा। लिअन्नहु वती अजारियतम मुश्तरकतन, इसलिए क्योंकि इसने मुश्तरका बांदी से सोहबत की है। इदिल मिल्कु यसबुतु हुक्मन लिलिस्तीलादी, इसलिए क्योंकि मिल्कियत साबित हुई है इस्तीलाद का हुक्म होकर। भाई देखिए, एक मसला था बाप ने अपने बेटे की बांदी से सोहबत की, और एक यह मसला है कि शरीक ने मुश्तरका बांदी से सोहबत की, तो दोनों के अंदर फर्क है। बाप तो बेटे की बांदी का मालिक ही नहीं था, तो वहां हमें मिल्कियत साबित करना पड़ेगी, और एक सूरत यह है मिल्कियत को हम जब हमल ठहरा, उस हमल ठहरने से पहले हम कहें बाप बांदी का मालिक बन गया। लेकिन इस सूरत में फिर जिना भी लाजिम आएगा, क्योंकि जिस वक्त बाप सोहबत करने लगा तो वो बेटे की बांदी है, जब बेटे की बांदी है उसके यानी गैर की बांदी है तो ये तो जिना हो जाएगा। लिहाजा जब हमने मिल्कियत को साबित करना ही है तो हमल ठहरने से पहले नहीं साबित करेंगे, बल्कि सोहबत से पहले ही मिल्कियत साबित कर देंगे। तो सोहबत से पहले ही बाप मालिक बन गया, तो अब जो सोहबत कर रहा है ये जिना है ही नहीं, ये अपनी बांदी के साथ सोहबत कर रहा है। जबकि यहां पर ये जो दो शरीकों में से एक ने सोहबत की है बांदी से, यहां पहले मिल्कियत को मुकद्दम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि निसब बांदी का तो ये पहले से ही मालिक है और ये मिल्कियत काफी है उम्मे वलद होने के लिए। लिहाजा यहां पहले से मिल्कियत साबित करने की जरूरत नहीं। जब मिल्कियत पहले साबित करने की जरूरत नहीं है तो इसने जो सोहबत की वो मुश्तरका बांदी से सोहबत की है। हां, अब आगे इस बांदी ने उम्मे वलद बनना है और उम्मे वलद बनने के लिए जरूरी है कि जो हमल ठहरे, हमल के वक्त से ही नसब साबित हो गई, और हमल के वक्त से ही नसब साबित होने के लिए जरूरी है कि उसी वक्त से इसको पूरी बांदी का मालिक करार दे दिया जाए। फर्क समझ में आया? तो बाप के मसले में बाप के लिए मिल्कियत साबित थी शर्त होकर, इस्तीलाद के लिए शर्त है मालिक होना, उम्मे वलद बनाने के लिए मालिक होना शर्त है भाई। तो लिहाजा वहां बाप के लिए मिल्कियत शर्त होकर साबित हुई, और शर्त मशरूत पर मुकद्दम होता है, लिहाजा वहां मिल्कियत उम्मे वलद बनाने पर मुकद्दम है, यानी वती से भी मुकद्दम हमने करार दे दी। और यहां पर तो ये पहले से ही मालिक है निसब बांदी का, लिहाजा यहां पर बाकी हिस्से का जो मालिक बनेगा वो शर्त होकर मालिक नहीं बन रहा, इस्तीलाद का हुक्म होगा। शर्त शय शय पर मुकद्दम होती है और हुक्म शय शय से मुअख्खर होता है जी। तो बाप जब मालिक बना था वहां मालिक होना शर्त था इस्तीलाद के लिए, लिहाजा पहले से मालिक करार देना पड़ेगा, वती से भी पहले वो मालिक हो गया। और ये जो दूसरा शरीक है ये तो पहले से मालिक है, इस्तीलाद की तो शर्त पूरी है, लेकिन इसने दूसरे हिस्से का भी मालिक बनना है, तो दूसरे हिस्से का जो मालिक बनेगा वो इस्तीलाद का हुक्म होगा, तो वो इस्तीलाद के बाद साबित होगा, यानी जब हमल ठहर रहा है ऐन उस वक्त ये मालिक बन जाएगा, तो ये इस्तीलाद के हुक्म के तौर पर साबित होगा। भाई फर्क समझ में आ रहा है? तो कहते हैं वयजमनु निस्फ उकरिहा, तो ये मुद्दाई जो है उस बांदी के निस्फ उकर का जामिन होगा, लिअन्नहु वतीअ जारियतन मुश्तरकतन, इसलिए क्योंकि इसने मुश्तरका बांदी से सोहबत की है, इदिल मिल्कु यस्बुतु हुक्मन लिलिस्तीलादी, इसलिए क्योंकि इसकी मिल्कियत साबित है इस्तीलाद का हुक्म होकर, यानी निसफ का तो ये मालिक है लेकिन दूसरे निसफ में जो इसकी मिल्कियत साबित है वो इस्तीलाद का हुक्म होकर, तो वो इस्तीलाद के बाद साबित होगी पहले नहीं, क्योंकि निसफ में मालिक तो ये पहले से ही है और वो इस्तीलाद के लिए काफी है। तो कहते हैं इदिल मिल्कु यस्बुतु हुक्मन लिल इस्तीलादी, इसलिए क्योंकि इसकी मिल्कियत जो है वो इस्तीलाद का हुक्म होकर साबित होगी, फयताअक्कबुहुल मिल्कु फी नसीबी साहिबिही, फयताअक्कबुहु यहां जमीर लौटाए वती को, फयताअक्कबुहुल मिल्कु तो उस वती के पीछे आएगी मिल्कियत, फी नसीबी साहिबिही अपने साथी के हिस्से में, वती के बाद ये शरीक जो है अपने साथी के हिस्से का मालिक बनेगा। तो वती की तो वो मुश्तरका बांदी थी और जब हमल ठहरने लगा तो वो इस पूरी बांदी का मालिक बन गया, तो साथी के हिस्से का मालिक बनना वो वती के बाद है, वती से पहले नहीं। तो ये माना है फयताअक्कबुहुल मिल्कु फी नसीबी साहिबिही, तो इस वती के पीछे होगा अपने साथी के हिस्से का मालिक बनना, बिखिलाफिल अबी इदस्तौलदा जारिया तबनीही, बखिलाफ बाप के जब उसने अपने बेटे की बांदी को उम्मे वलद बनाया, लिअन्नल मिल्का हुनालिका यस्बुतु शर्तन लिल इस्तीलादी, इसलिए क्योंकि वहां पर जो मिल्कियत थी वो इस्तीलाद के लिए शर्त होकर साबित हुई थी, तो वो इस्तीलाद पर मुकदम होगी भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल मिल्का हुनालिका यस्बुतु शर्तन लिल इस्तीलादी, इसलिए क्योंकि वहां पर मिल्कियत इस्तीलाद के लिए शर्त होकर साबित होती है, फयतकद्दमुहु तो वती पर मुकद्दम होती है, फसारवाति अम मिल्का नफ्सिही तो बाप जो है अपनी जाती मिल्कियत के अंदर वती करने वाला हो गया, यानी अपनी बांदी से वती कर रहा है, वला यगरमु कीमत वलदिहा, वला यगरमु कीमत वलदिहा। और ये जो मुद्दाई है, ये जो शरीक है, ये अपने दूसरे साथी के लिए बच्चे की कीमत का जामिन नहीं होगा, बच्चे की कीमत का जामिन नहीं होगा। वजह यह कि ऐन औलूक से पहले यह सारी बांदी का मालिक बन गया, तो अब ये जो बच्चे का हमल ठहरा है ये सारा इसी मुद्दाई ही का है भाई। तो कहते हैं वला यगरमु कीमत वलदिहा, और ये मुद्दाई जो है उस बच्चे की कीमत का जामिन नहीं होगा। लिअन्न नसब यसबुतु मुस्तनिदन इला वक्तिल उलूकी, इसलिए क्योंकि ये नसब साबित होता है मुस्तनिदन इला वक्तिल उलूकी, हमल ठहरने के वक्त की तरह मंसूब होकर, हमल ठहरने के वक्त की तरह मंसूब होकर नसब साबित है, यानी हमल ठहरने के वक्त से ही नसब साबित है। तो कहते हैं लिअन्न नसब यसबुतु मुस्तनिदन इला वक्तिल उलूकी, इसलिए क्योंकि नसब साबित होता है हमल ठहरने के वक्त की तरफ मंसूब होकर। फलम यन आलिक शय उम्मीन हो अला मिल्क शरीकी, फलम यन आलिक शय उम्मीन हो, लिहाजा उस बच्चे में से किसी चीज का उलूक नहीं हुआ अला मिल्क शरीकी, उस शरीक की मिल्कियत पर। बच्चे का हमल जब ठहरा तो ऐन हमल से पहले यह सारी बांदी का मालिक बन गया, तो बच्चे के उलूक में से कोई हिस्सा शरीक की मिल्कियत में नहीं था भाई। तो कहते हैं फलम यन आलिक शय उम्मीन हु, तो उस बच्चे में से कोई चीज जो है उसके हमल ने करार नहीं पकड़ा अला मिल्क शरीक, उस शरीक की मिल्कियत पर। आगे देखिए भाई, व इनी दाया हु मान सबता नसबुहु मिन हु मा, भाई अब सूरत यह है कि एक मुश्तरका बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और दोनों शरीकों ने दावा कर दिया कि यह हमारा बच्चा है, दोनों शरीकों ने इकट्ठा दावा कर दिया कि यह हमारा बच्चा है। अगर दोनों में से पहले एक दावा कर देता तो नसब उससे साबित हो जाना था, लेकिन दोनों ने इकट्ठा दावा किया तो अब यहां तरजीह की कोई सूरत नहीं है, लिहाजा इस बच्चे का नसब दोनों से साबित हो जाएगा, यह दोनों का बच्चा शुमार किया जाएगा। भाई हकीकत में तो दोनों में से एक का बच्चा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, तरजीह की कोई सूरत ही नहीं है, तो लिहाजा बच्चे का नसब दोनों से साबित हो जाएगा। यह तो एक सूरत थी कि दोनों ने इकट्ठा दावा किया, दूसरी सूरत यह है कि दोनों ने इकट्ठा तो दावा नहीं किया लेकिन अलग अलग मजलिसों में दावा किया है, एक को एक मजलिस में खबर मिली कि उसकी बांदी ने बच्चे को जन्म दिया है और तो इसने सुनते ही कहा कि ये मेरा बच्चा है, और दूसरे को किसी दूसरी मजलिस में इत्तला मिली तो उसने कहा ये मेरा बच्चा है। अब दोनों ने इकट्ठा तो दावा नहीं किया लेकिन तकदीम और ताखिर का यहां पता नहीं चल रहा कि किसने पहले दावा किया है और किसने बाद में, तो इसको भी इकट्ठा ही समझा जाएगा, तो इस सूरत में भी बच्चे का नसब दोनों से साबित हो जाएगा भाई। तो ये बच्चा दोनों का बच्चा शुमार होगा, बच्चे को दोनों से वरासत मिलेगी, बच्चे को दोनों से वरासत मिलेगी। मसलन वो बेटा है तो इन दोनों में से एक का इंतकाल होगा तो इस बच्चे को पूरे बेटे का हिस्सा मिलेगा, दूसरे का इंतकाल होगा तो भी इस बच्चे को पूरे बेटे का हिस्सा मिलेगा। दोनों से बच्चे का नसब साबित है तो ये दोनों बच्चे के बाप हुए तो ये दोनों भी बच्चे के वारिस बनेंगे। मसलन अगर बच्चे का कोई माल हुआ, किसने बच्चे को माल दे दिया और फिर बच्चे का इंतकाल हुआ तो फिर ये दोनों वारिस बनेंगे, लेकिन यहां पर दोनों को अलग अलग बाप का हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि बाप तो एक ही है दोनों में से, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा तो एक ही बाप का हिस्सा वो इन दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा, एक ही बाप का हिस्सा दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर एक का पहले इंतकाल हो चुका है और एक अभी जिंदा है जिस वक्त बच्चे का इंतकाल हुआ, तो फिर इस सूरत में सिर्फ जो जिंदा है वही इस बच्चे का वारिस बनेगा और उसको पूरे बाप का हिस्सा मिल जाएगा। तो कहते हैं वह इनी दाया हु मान, और अगर दोनों शरीकों ने इकट्ठा दावा कर दिया सब अतन नसबहु मिन हुमा, तो उस बच्चे का नसब दोनों से साबित हो जाएगा। माना हु, यहां से साहिबे हिदाया इस कौल का माना जिक्र कर रहे हैं। कुदूरी के लफ्ज क्या थे कि अगर दोनों ने इकट्ठा दावा किया तो दोनों से नसब साबित हो जाएगा। साहिबे हिदाया आगे बतलाएंगे कि यह उस सूरत में है जब ये दोनों इस बांदी के मालिक हों और इनकी मिल्कियत में बांदी हामिला हुई हो। अगर बांदी के हामिला होते वक्त सिर्फ दोनों में से एक मालिक था तो फिर उसी की उम्मे वलद बनेगी, उसी से बच्चे का नसब साबित होगा, दूसरे से बच्चे का नसब साबित नहीं होगा। तो यह जरूरी है कि जिस वक्त बांदी हामिला हुई उस वक्त ही दोनों की इसके अंदर मिल्कियत थी भाई। तो कहते हैं मानाहु, साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है, इदा हमलत आला मिल्की हिमा, कि जब बांदी हामिला हुई हो इन दोनों की मिल्कियत पर। वकाल शाफी रहिमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं, यूर जाऊ इला कौल काफती, के कियाफा शनासों के कौल की तरफ रुजू किया जाएगा। काफतुन भाई, काफा जमा है काइफ की, जैसे बाह जमा है बाएअ की, तो काफा जमा है काइफ की, और काइफ कहते हैं कियाफा शनास को। कियाफा शनास भाई अरब के अंदर ये कुछ लोग थे जो बच्चे के अंदर अलामतों से पहचान लेते थे कि ये किसका बच्चा है, यानी इतनी महारत उनको अल्लाह ने नसीब फरमाई थी। छोटा सा बच्चा है भाई, लेकिन उसके अंदर वो उसके जिस्म से, उसके आजा से, उसके चेहरे वगैरह से वो पहचान लेते थे कि ये किस शख्स की औलाद है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों से नसब साबित नहीं होगा, बल्कि फिर कियाफा शनासों को बुलाया जाएगा और वो फिर अलामतों के जरिए बयान करेंगे कि यह किसका बच्चा है। तो यह माना है। वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं, यूर जाऊ इला कौल काफती, के रुजू किया जाएगा कियाफा शनासों के कौल की तरफ। लि अन्न इस बात अन्न सभी मिन शख्सैनी, इसलिए क्योंकि दो आदमियों से नसब को साबित करना। मिना अन नलवलदा लायन खलिक मिम्मा ऐनी, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि एक बच्चा जो है वो दो नुतफों से पैदा नहीं हो सकता, इसके बावजूद दो शख्सों से एक नसब को साबित करना मुताअज़्ज़िरुन, ये मुताअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है भाई। तो ये मुताअज़्ज़िरुन, इसको जरा ये जो दरमियान में आया, मा इल्मीना अन्नल वलदा ला यनखलिकु मिम्मा ऐनी, बावजूद इसके कि हमें इलम है कि एक बच्चा दो नुतफों से पैदा नहीं हो सकता, जरा इसको निकाल दें यहां से और ये मुताअज़्ज़िरुन को माकबल शख्सैन के साथ जोड़ दें। देखिए तर्जमा यूं है, लिअन्ना इस बात नसब मिन शख्सैनी मुताअज़्ज़िरुन, इसलिए क्योंकि दो शख्सों से इसके नसब को साबित करना मुताअज़्ज़िरुन मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें इलम है कि एक बच्चा दो नुतफों से वो पैदा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं लि अन्न इस बात अन्न सभी मिन शख्सैनी, इसलिए क्योंकि दो शख्सों से इस नसब का साबित होना। मा इल्मीना अन अलवलदा ला यनखलिकु मिम्मा ऐनी, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि बच्चा जो है वो दो नुतफों से पैदा नहीं होता। तो ये एक शख्स से नसब का साबित करना मुताअज़्ज़िरुन, ये मुताअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है। फ़अमिलना बिश्शबही, तो हमने मुशाबहत पर अमल किया। कियाफा शनास मुशाबहतें देखता है ना, कि बच्चे की किसके साथ मुशाबहत है भाई। तो ये अजीब, अल्लाह ने इलम नसीब फरमाया था अरब के बाज लोगों को भाई। और कहते हैं ये बनु मुदलिज एक कबीला था, उसके लोग इस कियाफा शनासी के माहिर थे भाई, कियाफा शनासी के। तो कहते हैं फअमिलना बिश्शबही, तो हमने मुशाबहत पर अमल किया। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। तो कहते हैं हमने मुशाबहत पर अमल किया। वकद सुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम बिकौलिल काइफी फी उसामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वकद सुर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, और तहकीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए थे बिकौलिल काइफी फी उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कियाफा शनास के कौल से। हुजूर अलैहि सलाम हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कियाफा शनास के कौल से खुश हुए थे, और हुजूर अलैहि सलाम हक बात पर ही खुश हो सकते हैं, ना हक पर कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो ये दलील है कि कियाफा शनासी हक है, जब कियाफा शनासी हक है तो इसकी मदद ली जाएगी। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है भाई। भाई हुजूर अलैहि सलाम खुश हुए थे हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कियाफा शनास के कौल पर। हज़रत उसामा ये बेटे हैं हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, और हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा ये इनका रंग बहुत सफेद था, और हज़रत उसामा जो उनके बेटे थे उनका रंग बहुत काला था। तो इसकी वजह से अरब जो है वो इनके नसब में शक करते थे कि इतने सफेद बाप का इतना काला बेटा कैसे हो सकता है, मालूम हो ये इनका बच्चा नहीं है। जबकि इनसे हुजूर अलैहि सलाम को बड़ी मोहब्बत थी तो अरब इनके नसब पर तान करते थे। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आप बहुत खुश थे, फिर कहने लगे कि ए आयशा क्या तुम्हें इलम है आज मुजज्जिज़े मुदलीजी मेरे पास आए थे। ये हजरत मुजज्जिज़े मुदलीजी जो हैं ये बनू मुदलिज कबीले से थे और ये सहाबी हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के और ये कियाफा शनास थे, भाई बड़े माहिर थे इस चीज के। तो हुजूर फरमाने लगे हजरत आयशा से कि मेरे पास आज मुजज्जिज़े मुदलीजी आए थे और उस वक्त मस्जिद के अंदर उसामा भी सोए हुए थे और उनके वालिद जैद इब्ने हारिसा भी सोए हुए थे और दोनों ने अपने ऊपर एक चादर ली हुई थी, दोनों के चेहरे और ऊपर का हिस्सा छुपा हुआ था, हां उनके कदम जो थे पांव जो थे वो चादर से बाहर थे। तो वो मुजज्जी से मुदलीजी जब मेरे पास आए तो उनकी नजर उन दोनों के कदमों पर पड़ी तो खुद ही मुझसे कहने लगे कि ये दोनों कदम एक दूसरे से हैं, यानी ये दोनों आपस में बाप बेटा हैं, ये दोनों आपस में बाप बेटा हैं। तो इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए क्योंकि इससे अरबों के ताने की नफी हो गई थी, भाई उनके ताने का रद्द हो गया था। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकद सुर्रा रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम बिकौलिल काइफी फी उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और तहकीक हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए थे हजरत उसामा के बारे में कियाफा शनास के कौल से। वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील जो है किताब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इला शुरैहिन फी हादिहिल हादिसा। हमारी दलील जो है किताब उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत है, किताब से यहां मुराद खत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में काजी शुरैह गुजरे हैं, भाई किताबों के अंदर इनके वाकयात आते हैं, ये बहुत माहिर थे भाई, यानी ऐसे फैसले करते थे इंसान हैरान रह जाता था। अल्लाह ने इनको खास जहानत नसीब फरमाई थी फैसलों के मामले में भाई। तो हजरत उमर के जमाने में ऐसा ही मसला पेश आया कि एक बांदी के बच्चे के बारे में दो शरीकों ने दावा कर दिया कि यह हमारा बच्चा है जी। अब पता नहीं चल रहा कि यह किसका बच्चा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने खुद भी बड़े कियाफा शनास थे और हजरत उमर ने तीन और कियाफा शनासों को बुलवाया, सबकी राय यही थी कि बच्चे के अंदर दोनों की मुशाबहत है जी। बच्चे के अंदर दोनों मालिकों की मुशाबहत है। तो हजरत उमर बड़े हैरान हुए कि ऐसा हमने हैवानों में तो देखा है कि कई हैवान जब मादा से जुफ्ती करते हैं तो उस हैवान के बच्चों में सब के असरात नजर आते हैं, लेकिन इंसानों में हमने ये पहली दफा देखा है। तो चुनाचे फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने काजी शुरैह को खत लिखा और बतलाया कि इस बच्चे का नसब दोनों से साबित है भाई, दोनों का बच्चा उसको करार दिया। बात समझ में आ गई। देखिए आगे साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं। तो कहते हैं वलाना और हमारी दलील जो है किताब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इला शुरैहिन फी हादिहिल हादिसती, वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत है काजी शुरैह को फी हादिहिल हादिसती, इस मामले में। हादिसे से क्या मुराद है? मामला, इसी किस्म का मामला था ना, उसमें हजरत उमर ने काजी शुरैह को खत लिखा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खत के अंदर लिखते हैं लब्बसा फलुब्बिसा अलैहिमा। लब्बसा युलब्बिसु तलबीस का माना है हकीकत छुपाना। हज़रत उमर लिखते हैं लब्बसा कि इन दोनों शरीकों ने हकीकत को छुपाया है, फलुब्बिसा अलैहिमा तो इन पर हकीकत छुपा दी गई, इन्होंने मामले को छुपाया तो इन पर भी हकीकत छुपा दी गई। वलौ बय्यना, अगर ये दोनों हकीकत बयान कर देते लबुय्यिना लहुमा तो इनके लिए हकीकत बयान कर दी जाती। ये यूं कहें लब्बसा के दोनों ने नसब को छुपाया है, फलुब्बिसा अलैहिमा तो इस नसब को इन पर छुपा दिया गया। वलौ बयना लबुयना लहुमा, अगर ये दोनों बयान कर देते तो इनके लिए बयान कर दिया जाता। वह हुआ बनुहुमा, यह हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज जिक्र कर रहे हैं, वह हुआ बनुहुमा और ये लड़का जो है दोनों का बेटा है। यरिसुहुमा, ये दोनों का वारिस होगा। वह यरिसानी ही, और ये दोनों भी इस लड़के के वारिस होंगे। वह हुआ लिल बाकी मिनहुमा, और ये लड़का इन दोनों में से जो बाकी हुआ उसके लिए है। यानी फिर उस सूरत में वो जो एक बाप बाकी है उसी को सारी वरासत मिलेगी। तो कहते हैं वह हुआ लिल बाकी मिन हुमा, और ये लड़का जो है इन दोनों में से जो बाकी हुआ यानी जो जिंदा हुआ उसके लिए है। वकान दालिका बिमहज़र मिन सहाबती रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, और ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला का ये वाकया जो है सहाबा की मौजूदगी में हुआ। मालूम हुआ इस पर सहाबा का भी इजमा हो गया कि इस तरह वाकया हो तो दोनों से नसब साबित हो जाएगा, जब तरजीह की कोई सूरत न हो बई। وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी के मिसल रिवायत किया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो जब यमन के अंदर जब काजी थे तो इसी तरह का वाकया पेश आया। तो हजरत अली ने उस बच्चे का नसब दोनों से करार दिया और दोनों पर उस बच्चे का नफका वाजिब किया। और कहते हैं फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली, हुजूर की जिंदगी में यह वाकया हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो हुजूर मुस्कुराने लग पड़े। तो कहते हैं वान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्लु जालिक, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी के मिसल रिवायत है। वली अन्नहु मस्तवया फी सबबिल इस्तिहकाकी, अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं दोनों से नसब क्यों साबित होगा, अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं भाई। तो कहते हैं वली अन्नहुमस्तवया फी सबबिल इस्तिहकाकी, और इसलिए क्योंकि ये दोनों शरीक जो हैं बराबर हैं सबब इस्तिहकाक में, यानी दोनों की मिल्कियत थी उस बांदी के अंदर, तो सबब इस्तिहकाक में दोनों बराबर हैं। फयस्तवियानी फी ही, तो इस बच्चे के अंदर दोनों बराबर होंगे। व नसबू व इनका नला या तजू, और नसब जो है अगरचे उसकी तकसीम नहीं हो सकती। वला किन तल्लकु भी अहकाम उन मुतजन, लेकिन इसके साथ तकसीम होने वाले अहकाम का ताल्लुक होता है। याद रखो यहां नसब के सिलसिले में बाज अहकाम वो हैं जिनमें तकसीम हो सकती है, मसलन मीरास जो है वारिसों के अंदर तकसीम होती है। इसी तरह नफका जो है, नफका भी तकसीम होता है। आपने पढ़ा है कि अगर एक शख्स के दो बेटे हैं और यह शख्स ज़ईफ है बूढ़ा है तो दोनों बच्चों पर इसका नफका आएगा। तो मीरास के अंदर भी तकसीम होती है, इसी तरह नफके के अंदर भी तकसीम होती है। तो नसब के साथ बाज ऐसे अहकाम जुड़े हुए हैं जिनमें तकसीम होती है, तकसीम होती है, और बाज अहकाम इस नसब के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनमें तकसीम नहीं। तो जिन अहकाम में तकसीम होती है वो दोनों के लिए तकसीम होकर साबित हो जाएंगे, दोनों के लिए तकसीम होकर साबित हो जाएंगे, और जिन अहकाम में तकसीम नहीं होती तो वो पूरे पूरे दोनों के लिए साबित हो जाएंगे। मसलन बच्चे का नफका है, नफके में तकसीम होती है, लिहाजा दोनों पर बच्चे का नफका वाजिब हो जाएगा, निसफ एक पर और निसफ दूसरे पर। और इसी तरह मीरास के अंदर भी तकसीम होती है, तो दोनों के अंदर बच्चे की मीरास तकसीम होगी, दोनों को एक बाप का हिस्सा मिलेगा और उसको आपस में तकसीम कर लेंगे अगर बच्चे का इंतकाल हुआ और उसने कुछ माल छोड़ा। और नसब के साथ जुड़े हुए कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनमें तकसीम नहीं होती, जिनमें तकसीम नहीं होती, जैसे बच्चे पर बाप को विलायत हासिल होती है, बाप को, और इस विलायत के अंदर तकसीम नहीं हो सकती। जब इस विलायत के अंदर तकसीम नहीं हो सकती तो ये दोनों जो बाप हैं दोनों के लिए पूरी पूरी विलायत साबित हो जाएगी। दोनों बच्चे का निकाह करवा सकते हैं, दोनों को पूरी पूरी विलायत हासिल हो जाएगी भाई। और इसी तरह नसब खुद भी तकसीम नहीं होता तो दोनों से पूरा पूरा नसब साबित हो जाएगा भाई। तो कहते हैं वह नसब व इनकान लाया तजाऊ, और नसब जो है अगरचे वो खुद तकसीम नहीं होता, वलाकिन तताल्लुकु बिही अहकाम उन मुतजज़ियतुन, लेकिन इसके साथ ऐसे अहकाम का ताल्लुक होता है जो तकसीम हो जाते हैं, फमा यकबलु तजज़ियता, बस वो अहकाम जो तकसीम को कबूल कर लेते हैं, यसबुतु फी हक़िहिमा अला तजज़ियती, तो वो अहकाम साबित हो जाएंगे दोनों शरीकों के हक में तकसीम के तरीके पर। वमा लायक बलुहा, और वो अहकाम जो तकसीम को कबूल नहीं करते, यसबुतु फी हक़ कुल वाहिदिन मिन्हुमा कमला, वो इन दोनों में से हर एक के हक में पूरा पूरा होकर साबित होगा, का अल्लैसा माहू गैरुहू, गोया कि इसके साथ कोई और है ही नहीं। जो हुक्म तकसीम को कबूल नहीं करता वह हर एक के हक में पूरा पूरा साबित हो जाएगा जैसे इसके साथ कोई और है ही नहीं, यही अकेला है, तो उसके एक के हक में भी पूरा साबित होगा और दूसरे के हक में भी पूरा साबित होगा। भाई इल्ला इदा काना अहदु शरीकैन अबन लिल आखर, हां बास सूरतों में तरजीह मुमकिन होती है तो वहां फिर तरजीह पर हम अमल करेंगे। यहां तो दोनों आदमी शरीक थे बांदी के अंदर और दोनों ने इकट्ठा दावा किया है, लिहाजा यहां तो तरजीह की कोई सूरत नहीं, लेकिन बाज औकात तरजीह की सूरत होगी तो फिर जिसको तरजीह होगी उसी से नसब साबित होगा, दूसरे से नसब साबित नहीं होगा। मसलन एक बांदी है वो एक मुसलमान और जिम्मी के दरमियान मुश्तरका है, यानी एक मुसलमान है दूसरा काफिर है, तो मुसलमान को तरजीह होगी इस्लाम की वजह से, मुसलमान और जिम्मी दोनों ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो मुसलमान को तरजीह होगी, मुसलमान से उस बच्चे का नसब साबित होगा, उस जिम्मी से बच्चे का नसब साबित नहीं होगा। इसी तरह एक बांदी के अंदर बाप और बेटा दोनों शरीक हैं, तो और फिर बांदी ने बच्चे को जन्म दिया तो बाप ने भी दावा कर दिया और बेटे ने भी दावा कर दिया, दोनों ने इकट्ठा दावा किया, तो यहां पर बाप को तरजीह दी जाएगी। वजह यह कि बाप अपने हिस्से का भी मालिक है बांदी के अंदर और बेटे के हिस्से के अंदर भी उसको हक तमल्लुक है, मालिक बनने का हक है, तो बाप को तरजीह दी जाएगी, उस बच्चे का नसब बाप से साबित होगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं इल्ला इदा काना अहदु शरीकैन अबन लिल आखरी, मगर ये कि उन दो शरीकों में से एक जो है वो दूसरे का बाप हो, औ काना अहदुहुमा मुस्लिमन वल आखरु जिम्मियन, या उन दोनों में से एक मुसलमान हो और दूसरा जिम्मी हो, लिवजूद المرجح في حق المسلم, बवजह मुरजह के पाए जाने के मुसलमान के हक में, मुरजह यानी तरजीह देने वाली चीज पाई जा रही है मुसलमान के हक में, वह हुआ الاسلام, और वो इस्लाम है भाई, وفي حق الابي, और बाप के हक में भी मुरजह पाया जा रहा है, वह हुआ मा लहू मिनल हक फी नसीब الابن, ये तर्जमा समझ लें भाई, वह हुआ मा लहू, और वो जो है मां लहू, वो जो बाप के लिए साबित है जी। और वो चीज है जो बाप के लिए साबित है भाई, वो क्या चीज है, मिनल हक यानी के हक भाई, तो ये मिनल हक बयान है मां लहू का जी। वो क्या चीज है जो बाप के लिए साबित है, वो बाप का हक है, फी नसीबी लिबनी बेटे के हिस्से में, तो यहां यूं करें, अब ये जो मां आया है इसकी जगह ये हक को उठाकर ले आए, फिर तर्जमा करें, अब सुनिए तर्जमा, तो कहते हैं वफी हकिल अभी, और बाप के हक में भी मुरज्जह पाया जा रहा है, वह हुआ मा लहू मिनल हक फी नसीबी लिबनी, और वो जो बाप का हक है बेटे के हिस्से में वो मुरज्जह है जी। वो मुरज्जह जो है वो जो बाप का हक है बेटे के हिस्से में, वसुरूर उन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फीमा रुविया, अब यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह को, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हुजूर अलैहि सलाम खुश हुए थे तो मालूम हुआ कियाफा शनासी हक है, जब कियाफा शनासी हक है तो इसी की मदद ली जाएगी और उसके लिए नसब का पता चलाएंगे। हम कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम इसलिए खुश हुए थे कि हुजूर अलैहि सलाम को इन दोनों से बड़ी मोहब्बत थी और कुफार इनके नसब में ताना देते थे कि ये इसका बच्चा नहीं है, तो कियाफा शनास के कौल से उन कुफार के ताने का रद्द हो गया, तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम खुश हुए थे। तो कहते हैं वह सुरूर उन नबी अलैह सलात व सलाम फीमा रुविया, और हुजूर अलैह सलाम का खुश होना उस वाकये में जो रिवायत किया गया। लिअन अल कुफार कानू यतअनू नफी नसबी उसामता, इसलिए क्योंकि कुफार जो हैं वो ताना लगाते थे यानी वो एतराज करते थे फी नसबी उसामता उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नसब में। वकान कौलुल काइफ मुक्तियन लितानिहिम, और वो कियाफा शनास का जो कौल था मुक्तियन लितानिहिम वो कुफार के ताने को काटने वाला था, कुफार के ताने को उसने काट दिया था, उसको रद्द कर दिया था। फसुर बिही, तो इस वजह से हुजूर अलैहि सलाम खुश हुए भाई। आगे देखिए वकानतिल अमतु उम्म वलदिन लहुमा, और ये जो बांदी है दोनों की उम्मे वलद होगी, जब बच्चे का नसब दोनों से साबित हो गया तो बांदी भी दोनों की उम्मे वलद हो गई भाई। तो कहते हैं वकानतिल अमतु उम्म वलदिन लहुमा, और ये बांदी जो है दोनों शरीकों की उम्मे वलद हो जाएगी। लिसिहति दावति कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा फी नसीबिही फिल वलदी, यहां भी चाहे दावा पढ़ लें या दिअवा पढ़ लें, क्योंकि बाज़ उलमा ने लिखा है कि नसब के अंदर दिअवा का लफ्ज बोला जाता है। तो कहते हैं लिसे हती दावती कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा माफी नसीबी ही फिल वलदी, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक का दावा सही है। फी नसीबी ही फिल वलदी, उसका जो हिस्सा है बच्चे में, उसका जो हिस्सा है बच्चे में, तो दोनों का दावा सही है। फयसीर नसीबहु मिनहा उम्मा वलदिन तबअन लिवलदिहा, तो लिहाजा उसका हिस्सा भी उसका उम्मे वलद हो जाएगा बच्चे के ताबे होकर। भाई बच्चे का नसब दोनों से साबित है क्योंकि दोनों का बच्चे में हिस्सा है, और बच्चे के ताबे होकर यह बांदी भी दोनों की उम्मे वलद हो जाएगी। यह माना है फयसीर नसीबहु मिनहा उम्मा वलदिन तबअन लिवलदिहा, और इस बांदी में से जो हर एक का जो हिस्सा है वो उसका उम्मे वलद हो जाएगा, तब अली वलदिहा उस बांदी के बच्चे के ताबे होकर। वाला कुल वाहिदिन मिनहुमा निस्फुल उक्री किसासम बिमा लहू अलल आखर, अच्छा भाई दोनों पर निस्फ उक्र भी वाजिब होगा। जब बच्चे का नसब दोनों से साबित हुआ है, मालूम हुआ दोनों ने वती की है, तो जब दोनों ने वती की है तो बांदी के अंदर तो दूसरे का भी हिस्सा था, लिहाजा हर एक पर निस्फ उकर वाजिब हो जाएगा दूसरे शरीक के लिए। और फिर वहां मुकासा हो जाएगा। मुकासा कहते हैं एक देन को दूसरे देन का बदल करार देकर हिसाब पूरा कर देना। मसलन देखो, आपने मेरे 20,000 रुपए अदा करने हैं, और फिर मैंने आपसे कुछ किताबें खरीद ली, उन किताबों की कीमत भी 20,000 थी, तो अब आपने भी मेरे 20,000 देने हैं और मैंने भी आपके 20,000 देने हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ये 20,000 उन 20,000 के बदले में पूरे हो गए। इसको कहते हैं मुकासा, एक देन को दूसरे देन का बदल करार देकर हिसाब चुका देना, हिसाब पूरा कर देना, इसको क्या कहते हैं मुकासा। तो दोनों शरीकों में से हर एक पर निसफ निसफ होकर आ रहा है, तो यहां पर भी मुकासा हो जाएगा, एक पर जो निस्फ उकर है उसका मुकासा हो जाएगा दूसरे के निस्फ उकर के साथ भाई। तो कहते हैं वाला कुल वाहिद मिनहुमा निस्फुल उकरी, और इन दोनों में से हर एक पर निस्फ उकर होगा किसासन बतौर बदले के, बिमा लहू अलल आखरी उसके इवज में जो दूसरे पर वाजिब है। हर एक पर निस्फ उकर वाजिब होगा उसके बदले में जो दूसरे पर वाजिब हो रहा है यानी निस्फ उकर। तो यह माना है वाला कुल वाहिदिन मिनहुमा निस्फुल उकरी, और इन दोनों में से हर एक पर निस्फ उकर वाजिब होगा किसासम बिमा लहू अलल आखरी उस बदले के तौर पर वो जो दूसरे पर निस्फ उकर वाजिब हो रहा है। वया रिसुली बनु मिन कुल वाहिदिन मिनहुमा मीरा सब निन का मिलिन, और ये बच्चा वारिस होगा इन दोनों में से हर एक से, मीरा सब निन का मिलिन एक पूरे बेटे की मीरास का, ये बच्चा पूरे बेटे की मीरास का वारिस होगा। लिअन्नहु अकर्र लहू बिमीरासिही कुल्लिही, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक ने इकरार किया है उसके लिए सारी मीरास का, यानी दोनों ने कहा है ये मेरा बेटा है, तो दोनों ने उसके लिए गोया मीरास का इकरार कर लिया है। तो लिअन्नहु अकर्र लहू बिमीरासिही कुल्लिही, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक ने उसके लिए उसकी पूरी मीरास का इकरार किया है। वह हुआ हुज्जतुन फी हक्की ही, और ये इकरार उनके हक में हुज्जत है, ये इकरार उन दोनों के हक में हुज्जत है तो दोनों को अब यह हिस्सा देना पड़ेगा। वह ये रिसान मिन हूं मीरास अब वाहिदीन, और ये दोनों इस बच्चे से वारिस होंगे मीरास अब वाहिदीन, एक ही बाप की मीरास के, यानी दोनों को एक ही बाप की मीरास मिलेगी क्योंकि दोनों में से हकीकत में एक बाप है, अलबत्ता वो मालूम नहीं है, तो एक ही बाप की मीरास, एक ही बाप का हिस्सा दोनों में आधा आधा तकसीम कर दिया जाएगा। यह माना है वह रिसान मिन हूं मीरास अब वाहिदीन, और ये दोनों वारिस होंगे उस बच्चे से मीरास अब वाहिदीन, एक ही बाप की मीरास के, लिस्तिवा इही माफी सबबी, इस वजह से कि सबब मीरास में दोनों बराबर हैं, कमा इदा अकामल बयना था, कमा इदा अकामा, जैसे ये दोनों कायम कर दें अल बयना था गवाही को। भाई देखो जैसे एक ही चीज के बारे में दो आदमी दावा, जैद के पास एक चीज है, दो आदमी आ गए दोनों ने दावा कर दिया कि यह चीज हमारी है, और जैद कहता है नहीं ये चीज इनकी नहीं है, और दोनों ने गवाह पेश कर दिए, तो यह चीज दोनों के दरमियान मुश्तरका हो जाएगी, उसको दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी सबब दोनों के लिए पाया जा रहा है, दोनों ने इकरार किया है, दोनों से नसब साबित हुआ है, तो लिहाजा दोनों बराबर होंगे मीरास के अंदर, एक ही बाप की मीरास दोनों को मिल जाएगी। यह माना है लिस्तिवा इही माफी सबबी, बवजह बराबर होने के दोनों के सबब के अंदर, कमा इदा अकाम अल बयना था, जैसे कि दोनों बयना कायम कर दें, व इदा वती अल मौला जारियत मुकातबी ही फजा अदिवल अदिन फदाहू फिन सदकहुल मुकातबु सबत नसबुल वलदी मिन। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने अपने गुलाम को मुकातब बना दिया, और ये मुकातब जो है अब वो पैसे अदा कर रहा है हर महीने, और इसने आजाद होना है, तो ये मुकातब तिजारत कर रहा है, और इसने इसके पास माल इकट्ठा होता जा रहा है, इसने गुलामों और बांदियों की तिजारत भी शुरू कर दी, फिर इसकी इसी मुकातब की एक बांदी के साथ इसके आका ने सोहबत कर ली, इसके आका ने सोहबत कर ली। अब याद रखो ये जो बांदी है ये मुकातब की है, आका की बांदी नहीं है, आका की बांदी नहीं है, तो लिहाजा यहां पर हद आनी चाहिए, हद आनी चाहिए, लेकिन चूंकि आका का यह ख्याल था कि यह तो मेरे अपने गुलाम की कमाई है यह बांदी, तो इसलिए मेरे लिए इसके साथ सोहबत जायज है, इसलिए यहां हद जिना आका पर जारी नहीं होगी। तो फिर इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और आका ने दावा कर दिया कि यह मेरा बच्चा है, तो क्या इस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा, और क्या यह बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी? तो फुकाहा फरमाते हैं कि अगर मुकातब ने तस्दीक कर दी तो फिर तो बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा, अगर मुकातब ने तस्दीक न की तो फिर बच्चे का नसब आका से साबित भी नहीं होगा, और नीज बच्चे का नसब साबित हो भी जाए फिर भी यह बांदी इस आका की उम्मे वलद नहीं बनेगी, ये बांदी उस आका की उम्मे वलद नहीं बनेगी, क्योंकि इस बांदी के अंदर आका की मिल्कियत नहीं है भाई, और उम्मे वलद होने के लिए क्या जरूरी है कि उस बांदी में मिल्कियत हो। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह ईदा वती अल मौला जारियत मुकातबी ही, और जब आका ने सोहबत कर ली अपने मुकातब की बांदी से, फजा अद भी वलदीन, तो वो एक बच्चे को ले आई, यानी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, फदाहू, तो आका ने उसका दावा कर दिया, फइन सद्दकहुल मुकातबू, तो अगर मुकातब ने आका की तस्दीक कर दी तो सब अता नसबुल वलदी मिन्हू, तो फिर उस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा, और अगर मुकातब ने तस्दीक न की तो नसब साबित नहीं होगा। तो कहते हैं सब अता नसबुल वलदी मिन्हू, अगर मुकातब ने तस्दीक कर दी तो उस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा। वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है, अन्नहु ला युअतबरु तस्दीकुहू, इमाम अबू यूसुफ रहमला फरमाते हैं कि यहां मुकातब की तस्दीक का कोई एतबार नहीं, बस जब आका ने कह दिया कि यह मेरा बच्चा है तो खुद बहुत नसब साबित हो जाएगा, मुकातब की तस्दीक या तकजीब को नहीं देखा जाएगा। वो इसको कयास करते हैं वो जो बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत की उस पर, जैसे बाप बेटे की बांदी से सोहबत कर ले और बांदी बच्चे को जन्म दे और बाप दावा कर दे ये मेरा बच्चा है तो वो नसब साबित हो जाता है, वहां बेटे की तस्दीक या तकजीब को नहीं देखा जाता। तवज्जो है। तो जैसे बाप के मसले के अंदर बेटे की तस्दीक या तकजीब को नहीं देखा जाता, तो यहां मुकातब के मसले में भी आका के दावे से नसब साबित हो जाएगा, मुकातब की तस्दीक या तकजीब को नहीं देखा जाएगा। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है कि नहुला युअतबरु तस्दीकुहु, के मुकातब की तस्दीक का कोई एतबार नहीं है, एतबार अम्बिल अभी कियास करते हुए बाप पर, यदाई वलद जारियति बनी ही, जो दावा करता है अपने बेटे की बांदी के बच्चे का, उस बाप पर कियास करते हुए। वजहु जाहिरी, और जाहिर रिवायत की वजह, भाई ऊपर मतन में तो आया कि मुकातब की तस्दीक मुअतबर है, वो तस्दीक करेगा तो नसब साबित होगा, तो मालूम हुआ जाहिर रिवायत में बाप के दावे में और आका के इस दावे में फर्क किया गया है। अब उस फर्क की वजह क्या है? बाप के मसले में बेटे की तस्दीक मुअतबर नहीं और मुकातब के मसले में मुकातब की तस्दीक मुअतबर है, ये फर्क क्यों है? अब उसकी वजह बयान करेंगे। कहते हैं वजह जाहिरी, और जाहिर रिवायत की वजह जो है वह हुवल फर्कु, और वही फर्क भी है। जाहिर रिवायत की वजह यह है और यही फर्क भी है। क्या वजह है? वो आगे जिक्र कर रहे हैं। भाई इधर देखिए, भाई वजह यह कि बाप का बेटे के माल में हक तमल्लुक होता है, बाप हाजत की वजह से बेटे के माल का मालिक बन सकता है, जबकि मुकातब का जो माल है आका का, उसके अंदर हक तमल्लुक नहीं है, हक मिल्कियत है, हक मिल्कियत है, क्योंकि मुकातब ने यह लाकर आका ही को देना है, और अगर यह मुकातब हाजिज आ गया पैसे कमाने से, तो फिर इस सूरत में यह सारा कुछ आका का हो जाएगा। तो आका का हक मिल्कियत है मुकातब के माल में, लेकिन हक तमल्लुक नहीं है कि मालिक ही बन जाए, ऐसा नहीं है। भाई बाप का तो बेटे के माल में हक तमल्लुक है, हाजत के वक्त उसका मालिक बन सकता है जी। लेकिन आका हाजत की वजह से मुकातब के माल का मालिक नहीं बन सकता, हक मिल्कियत है, हक तमल्लुक नहीं है। हां अगर मुकातब आजीज आ गया फिर यह सारा कुछ आका का हो जाएगा, लेकिन हाजत की वजह से आका उसका मालिक बन जाए ऐसा नहीं है। तो दोनों में फर्क है, दोनों मामलों में बाप को हक तमल्लुक हासिल है बेटे के माल में, लेकिन आका को मुकातब के माल में हक तमल्लुक हासिल नहीं, वो हाजत के वक्त उसके माल का मालिक नहीं बन सकता। तो कहते हैं वजह जाहिरी, और जाहिर रिवायत की वजह जो है वह हुवल फर्कु, और वही फर्क भी है। जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन्नल मौला ला यमलिकु तसर्रुफ फी अक्साब मुकातबी ही, कि आका जो है वो मालिक नहीं है तसर्रुफ करने का, फी अक्साब मुकातबी ही, अपने मुकातब की कमाइयों में, हता ला यतमल्लकुहु, यहां तक कि आका जो है वो मुकातब की कमाइयों का मालिक भी नहीं बन सकता हाजत के वक्त। भाई हत्ता ला यतमल्लकुहु, यहां पर हत्ता नसब नहीं देगा भाई, तो यहां यतमल्लकु पर रफा पड़ेंगे। हत्ता ला यतमल्लकुहु, यहां तक कि आका जो है वो हाजत के वक्त मुकातब की कमाई का मालिक नहीं बन सकता। वल अबु यमलिकु तमल्लुकहु, वल अबु यमलिकु, और बाप जो है वो मालिक है तमल्लुकहु, बेटे के माल का मालिक बनने का, बेटे के माल का मालिक बनना, बाप इस चीज का मालिक है कि वो बेटे के माल का मालिक बन सकता है। तो कहते हैं वल अब यमलिकु तमल्लुकहु, और बाप जो है वो मालिक है बेटे के माल के तमल्लुक का, फला मुअतबर बि तस्दीक लिबनी, लिहाजा इसलिए बेटे की तस्दीक का कोई एतबार नहीं, जबकि मुकातब की तस्दीक का एतबार है भाई। वा अलैहि उक्रुहा, और आका पर इस बांदी का उक्र भी वाजिब होगा, क्योंकि आका ने मुकातब की बांदी से सोहबत की है। तो इस सूरत में या हद आती है या उकर आता है, और यहां हद तो नहीं आई, अलबत्ता उकर आ जाएगा, तो वो अब आका को देना पड़ेगा। वा अलैहि उक्रुहा, और आका पर इस बांदी का उकर वाजिब होगा, यानी इसका महर अब उसे देना पड़ेगा। लिअन्नहु ला यतक़द्दमुहुल मिल्कु, इसलिए क्योंकि आका की मिल्कियत बांदी पर मुकद्दम नहीं है। बाप के मसले में तो बाप की मिल्कियत बेटे की बांदी पर मुकद्दम हो गई थी वती करने से पहले, क्योंकि बाप के लिए हक तमल्लुक है, जबकि आका के लिए तो मुकातब के माल में हक तमल्लुक नहीं, लिहाजा आका जो है मुकातब की बांदी का मालिक नहीं बना, जब मालिक नहीं बना तो इसने गैर की बांदी से सोहबत की है तो अब ओकर देना पड़ेगा यानी महर देना पड़ेगा। तो कहते हैं लिअन्नहु ला यतकद्दमुहुल मिल्क, इसलिए क्योंकि ये आका की मिल्कियत आका की वती पर मुकद्दम नहीं है। लिअन्नमा लहु मिनल हक, इसलिए क्योंकि आका के लिए वो चीज जो साबित है, मिनल हक ये बयान है मालहू का, तो ये मां की जगह अब हक को ले आए। लिअन्नमा लहु मिनल हक, इसलिए क्योंकि आका का जो हक साबित है, आका का क्या हक है मुकातब के माल में, हक मिल्कियत है, हक तमल्लुक नहीं, हाजत के वक्त मालिक बन जाए ऐसा नहीं है, हां हक मिल्कियत है, अगर मुकातब कमाई से आजिज आ गया तो आका इन सब चीजों का मालिक बन जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नमा लहु मिनल हक काफिन लिसिहतिल इस्तिलादी लिमा नज़कुरुहु, लिअन्नमा लहु मिनल हक, इसलिए क्योंकि आका का जो हक है मुकातब के माल में काफिन वो काफी है लिसिहतिल इस्तिलादी, यहां फिर इस्तीलाद का तर्जमा तलब औलाद के करेंगे, उम्मे वलद बनाना नहीं इसका तर्जमा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बतला दिया कि आका के दावे से नसब तो साबित होगा लेकिन यह बांदी उसकी उम्मे वलद नहीं बनेगी क्योंकि आका इसका मालिक नहीं है। तो कहते हैं लिअन्नमा लहु मिनल हक, इसलिए क्योंकि आका का जो हक साबित है काफिन वो काफी है लिसिहतिल इस्तीलादी तलब औलाद के सही होने के लिए, इस्तीलाद का क्या तर्जमा करें तलब औलाद के सही होने के लिए ये आका का हक काफी है, इसे नसब तो साबित हो जाएगा लेकिन उम्मे वलद होना साबित नहीं होगा। तो ये हक जो है काफिन काफी है लिसिहतिल इस्तीलादी तलब औलाद के सही होने के लिए लिमा नज़कुरुहु, उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे आगे आपको बतलाएंगे। वकीमतु वलदीहा, ये मतन है, मतन को मतन से जोड़ें, पीछे आया था वह अलैहि उकरुहा वकीमतु वलदीहा, और आका पर इस बांदी का उकर यानी महर भी लाजिम होगा, वकीमतु वलदीहा और इस बांदी के बच्चे की कीमत भी वाजिब होगी, वो कीमत भी अब आका को देना पड़ेगी, मुकातब के हवाले करना पड़ेगी। तो कहते हैं वकीमतु वलदीहा, और आका पर इस बच्चे की कीमत भी है लिअन्नहु फी मानल मगरूरी, इसलिए क्योंकि ये भी मगरूर के माना में है, इसलिए क्योंकि आका भी मगरूर के माना में है। मगरूर का क्या माना था, जिसको धोखा दिया गया हो, यहां आका को तो धोखा नहीं दिया गया लेकिन आका खुद ही धोखा खा गया, वो समझा था ये मेरे मुकातब की बांदी है तो ये मेरे लिए हलाल होगी, हालांकि वो तो इसके लिए हलाल नहीं थी भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु फी मानल मगरूरी, इसलिए क्योंकि ये आका जो है ये मगरूर के माना में है, हैसु अतमदा दलीलन, क्योंकि इसने एक दलील पर एतमाद किया, वह हुआ अन्नहु कस्बु कस्बी ही, और वो ये कि ये इसकी कमाई की कमाई है, ये बांदी इसके मुकातब की कमाई है, ये मुकातब भी क्या है आका की कमाई है, और मुकातब की बांदी वो मुकातब की कमाई है, तवज्जो है। तो आका ने ख्याल किया कि जैसे ये मुकातब मेरा ममलूक है तो इसकी बांदी भी मेरे लिए हलाल है क्योंकि वो मेरे गुलाम की बांदी है यानी मेरी कमाई की कमाई है। तो कहते हैं हैसु अतमदा दलीलन, क्योंकि आका ने एक दलील पर एतमाद किया, वह हुआ अन्नहु कस्बु कस्बी ही, और वो ये कि ये उसकी कमाई की कमाई है कि ये बांदी अन्नहु हाजमीर बांदी को लौटाएं, वह हुआ अन्नहु कस्बु कस्बी ही कि ये जो बांदी है ये इसकी कमाई की कमाई है। आका की कमाई कौन, मुकातब, और मुकातब की कमाई क्या, बांदी। तो ये जो बांदी है ये आका की कमाई की कमाई है। इस पर इश्काल होता है कि अन्नहु की हाजमी तो मुजक्कर की है और बांदी ये तो मुअन्नस है, तो जवाब ये कि ये जमीर राजिअ है बांदी को शख्सुन की तावील में। याद रखो शख्स का इतलाक मुजक्कर और मुअन्नस दोनों पर होता है, तो शख्स का लफ्ज तो मुजक्कर है क्योंकि इसके साथ कोई तानीस की अलामत नहीं जुड़ी हुई, न गोलता है न अलिफ मकसूरा है, तो तानीस की कोई अलामत तो इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है। तो अन्नहू की हाजमीर बांदी को राजे है शख्सुन की तावील में, क्योंकि बांदी भी एक शख्स है। या दूसरा जवाब यह कि अन्नहु की हाजमीर ये लौट रही है बांदी की तरफ और बांदी है मुअन्नस, तो मर्जिअ है मुअन्नस, और आगे जो खबर आ रही है कस्बु कस्बी ही, तो ये कस्ब का लफ्ज तो मुजक्कर है, और जब जमीर दायर हो जाए बैनल मर्जिअ वल खबरी, तो दोनों में से जिसकी भी आप रियायत रखना चाहे रख सकते हैं। आप चाहें तो मर्जिअ की रियायत रखें तो उसके मुताबिक जमीर ले आए, और आप चाहें तो खबर की रियायत रखें और उसके मुताबिक जमीर ले आए। तो यहां पर आगे कस्ब का लफ्ज आ रहा है, जो खबर है वो मुजक्कर थी, इसलिए जमीर भी मुजक्कर की लाए भाई। तो कहते हैं वह हुआ अन्नहु कस्बु कस्बिही, और वो ये कि जो बांदी है ये आका की कमाई है, फलम यर्ज़ा बिरिक़िही, तो लिहाजा आका राजी नहीं है इस बच्चे के गुलाम होने पर, फयकून हुर्रम बिल कीमती, तो ये बच्चा आजाद होगा कीमत के इवज में, साबितन नसब मिनहु, और आका से साबितुन नसब होगा। तो यह वलदुल मगरूर के दर्जे में हुआ, और वलदुल मगरूर वो कीमत के इवज आजाद होता है, तो यह बच्चा भी कीमत के इवज आजाद होगा और आका को उसकी कीमत देना पड़ेगी। वला तसीर उलजारियतु उम्म वलदिन लहू, और ये बांदी जो है आका की उम्मे वलद नहीं बनेगी, लिअन्नहु ला मिल्का लहू फीहा हकीकतन, इसलिए क्योंकि आका की इस बांदी में कोई मिल्कियत नहीं है, हकीकतन हकीकत के एतबार से, हकीकत के एतबार से आका की इसमें कोई मिल्कियत नहीं, लिहाजा इसकी उम्मे वलद नहीं हो सकती। कमा फी वलदिल मगरूरी, जैसे कि वलद मगरूर में है, जैसे वलद मगरूर में है। याद रखो यहां वलद मगरूर से पहले उम का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाल लें, कमाफी उम में वलद मगरूरी, जैसे कि वलद मगरूर की मां के मसले में है, वलद मगरूर की मां के मसले में है। मसलन एक आदमी एक बांदी को खरीद कर ले आया, और उस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और आका ने कहा यह मेरा बच्चा है। अब आका का यह ख्याल है कि यह मेरी उम्मे वलद हो चुकी है, लेकिन बाद में इस बांदी का कोई और मुस्तहिक निकल आया और वो बांदी को ले गया, मालूम हुआ यह बांदी इसकी उम्मे वलद नहीं बनी। तो जैसे वलद मगरूर की मां जो बांदी है वो उम्मे वलद नहीं बनती उसकी, उस बच्चे के बाप की, उस इस आका की, तो इसी तरह यहां पर भी ये जो मुकातब की बांदी है ये आका की उम्मे वलद नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं दोबारा तर्जमा देखिए, वला तसीर उलजारियत उम्म वलदिन लहू, और ये बांदी जो है उस आका की उम्मे वलद नहीं बनेगी, लिअन्नहु ला मिल्का लहू फीहा हकीकतन, इसलिए क्योंकि आका की इसके अंदर हकीकतन कोई मिल्कियत नहीं है। कमा फी वलदिल मगरूरी, जैसे कि वलदिल मगरूर के मसले में है, जैसे वलदिल मगरूर की जो मां है उसके अंदर ये जो दूसरा आका था इसकी कोई मिल्कियत नहीं थी, तो वो उसकी उम्मे वलद नहीं बनी थी। आगे देखिए, वह इनका दबहुल मुकातब फिन नसब लम यसबुत, और अगर मुकातब ने जो है आका की तकजीब कर दी नसब में, लम यसबुत, तो नसब साबित नहीं होगा। आका ने कहा यह मेरा बच्चा है, मुकातब ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो अब नसब साबित नहीं होगा। तो कहते हैं वह इनका दबहुल मुकातब फिन नसब लम यसबुत, और अगर नसब के अंदर मुकातब ने आका की तकजीब कर दी तो नसब साबित नहीं होगा। लिमा बैन्ना अन्नहु लाबुद्द मिन तस्दीकिही, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि मुकातब की तस्दीक जरूरी है। फलाव मलकहु यौमन, तो अगर आका जो है वो इस बच्चे का मालिक बन गया किसी दिन, आका अगर किसी दिन इस बच्चे का मालिक बन गया, सब अता नसबहु मिनहु, तो इस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा। पहले मुकातब ने तकजीब की थी तो नसब साबित नहीं हुआ था, लेकिन जब आका किसी दिन इस बच्चे का मालिक बन गया तो अब वो जो मान्या था, मान्या क्या था कि ये बच्चा मुकातब का हक था, तो मुकातब का हक मान्या बन रहा था, लेकिन अब तो वो मान्या चला गया, आका खुद मालिक बन गया है इस बच्चे का, तो तब नसब साबित हो जाएगा और यह बच्चा आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं फलाउ मलकहु यौमन, अच्छा यहां यौमन आया, आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि यौम का लफ्ज जो है जब इसकी निस्बत हो ऐसे फेल की तरफ जिसमें इम्तेदाद ना हो तो फिर ये वक्त के माना में होता है, और यहां पर भी आया फलाओ मला कहो मालिक बनना, और मालिक बनना इसमें इम्तेदाद नहीं होता, एक लम्हे में आप मालिक बन जाते हैं एक चीज के, किसी ने आपको कोई किताब दी तो आप लेते ही मालिक बन गए, आप जैसे ही बैक करते हैं बैक करते ही चीज के मालिक बन जाते हैं, तो मालिक बनने में इम्तेदाद नहीं, और यौम का लफ्ज जब ऐसे फेल के साथ इस्तेमाल हो जिसमें इम्तिदाद न हो तो फिर यह वक्त के माना में होता है। तो यहां भी यौम का माना वक्त के साथ कर लें। तो कहते हैं फला उम्मा लकहू यौमन, और अगर किसी वक्त आका इस बच्चे का मालिक बन गया, सबता नसबहू मिनहू, तो इस बच्चे का नसब आका से साबित हो जाएगा। लिकियामिल मूजिबी, इसलिए क्योंकि मूजिब पाया जा रहा है। मूजिब यानी वो चीज जो साबित करने वाली है नसब को, और वो क्या थी? वो आका का इकरार था। तो कहते हैं लिकियामिल मूजिबी, मुस्बित के पाए जाने की वजह से। तो कहते हैं लिकियामिल मूजिबी, मुस्बित के पाए जाने की वजह से। वजवाल हकिल मुकातबी, और मुकातब का हक जायल हो जाने की वजह से। इद हुवल मानेऊ, क्योंकि वही मानेअ है भाई, मुकातब का हक ही मानेअ है। जब वो हक खत्म हो गया तो अब आका का इकरार जो है उसकी वजह से वो नसब साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।